आज 9 मई 2024 है, जो पिछला पूरा साल द कंट्री वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद वॉज द आफ्टर मैथ ऑफ द इवेंट्स ऑफ 9 मई ऑफ लास्ट ईयर. अब एक साल हो चुका है उस वाक्य को, तो बयानिए, नज़रिए, पोलिटिकल एफिलिएशंस, इन चीज़ों से बालातर होकर थोड़ा तारीख में जाकर अगर सच्चाई से हम चीज़ें देखें, आई थिंक ऑफन वी गेट कॉट इन आवर ओन कैम्प्स एंड आर्ग्यूइंग फ्रॉम पोजिशंस ऑफ एक्सट्रीम कि मेरा वाला हर चीज़ अच्छा करता है, आपके वाला हर चीज़ बुरा करता है. इन सब चीज़ों को आप साइड पे रखें और जो बयानिए बाय रेपिटिशन सच बन गए हैं उनको थोड़ा अनपैक करने की हमारी आज की इस वीडियो में कोशिश होगी कि मैं अपनी राय भी आपको दूँ. कई जो मैं बातें करता हूँ इट्स बेस्ड ऑन व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट 20 ईयर्स हैव बिन. वो सुने बगैर, वो जाने बगैर अगर आप आज मेरी कोई एक राय सुनते हैं, उसको आप बायस समझते हैं, उसको आप गलत समझते हैं, थोड़ा तारीख में जाते हैं. पीटीआई का जो एक रीलॉन्च हुआ है, रीबर्थ हुई है, वो तो 2011 के जलसे के बाद से हुई थी. लेकिन अगर ये बात इमरान खान बार बार करते हैं, और कभी कभी मुझे भी कमेंट्स में आता है कि 22 साल की स्ट्रगल थी, अगर तो मिलिट्री ने उनको इंस्टॉल करना था तो जब लॉन्च किया तभी क्यों नहीं इंस्टॉल कर दिया. एक तो पहली बात, इतना आसान नहीं होता. अगर तो मैं आपको कहूँ, और अक्सर आजकल के पीटीआई सपोर्टर्स को लगता भी है ये, वो सच है या नहीं इस बात को छोड़ दें, शायद अफरीदी की जिस तरह पीआर की जा रही है, लॉन्च किया जा रहा है या ग्रूम किया जा रहा है, लेट्स अज्यूम, कंप्लीट अजम्पशन, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ना मैं कह रहा हूँ कि ये सच है, कंप्लीट अजम्पशन की बेस पर हम ये सोचते हैं कि शायद अफरीदी को ग्रूम किया जा रहा है पॉलिटिक्स में लाने के लिए मिलिट्री से. अगर तो अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें शायद अफरीदी की पार्टी बना दी जाती, इलेक्टेबल्स डाल दिए जाते, कोई ये बात मानता कि शायद अफरीदी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या इनकी इतनी मकबूलियत है जस्ट बिकॉज क्रिकेट में उनकी मकबूलियत थी, एंड अनडिनाइबल है जो क्रिकेट में शाहिद आफरीदी की मकबूलियत थी, बट वो पॉलिटिक्स में नहीं ट्रांसलेट होती. इमरान खान भी जब पॉलिटिक्स में आए थे इस तरह नहीं था कि 2011 का जलसा हो गया. 90s में लोग नहीं आते थे इमरान खान का अगर कुछ जलसा भी हो. मुझे उनके एक दोस्त ने बताया कि वो एक दिन गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने देखा सिग्नल पे एक आदमी खड़ा हुआ है, जब वो करीब गए तो उन्होंने बोला अब इमरान खान है. वो लाउडस्पीकर के कुछ सुनने को भी तैयार नहीं था. इवन टीवी इंटरव्यूज़ में मुझे लोगों ने बताया है कि जब कोई नहीं मिलता था तो हम इमरान खान को बुला लेते थे. सो लेट्स गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ इमरान खान्स करियर. पीटीआई जो है वो लॉन्च की गई एक आइडिया से कि ये थर्ड फोर्स हमें चाहिए. पहली बात तो ये बेसिस ही इस बात का झूठ है, वो मिलिट्री ब्रेन वॉशिंग से आता है कि दो पार्टीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर रूल किया है, पीपीपी और पीएमएलएन. आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा मिलिट्री रूल के अंडर रहा है. अगर हम 90s में भी देख लें तो अयूब खान के 10 साल आ चुके थे, ज़ियाउलहक के 10 साल आ चुके थे, मुशर्रफ के 10 साल आने वाले थे. तो ये कौन से दो पार्टीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में तारीखी तौर पर उन पर रूल किया है? आईजीआई जो है वो बार बार मैं कहता हूँ कि 90s की पीटीआई थी, नवाज शरीफ थे, जो वो इमरान खान थे 90s के, वो भी एक मिलिट्री प्रोडक्ट था ना. इट्स जस्ट व्हेन नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट डिसमिस हुई और इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि अच्छा यार ये भी इतने रिलायबल नहीं हैं, तो उन्होंने थोड़ा फासला उनसे अख्तियार किया. एंड हमीद गुल हैज़ बिन ऑन द रिकॉर्ड रिपीटेडली सेइंग के हम बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिराना चाहते थे, हमारी एक सोच थी, बाय हमारी ही मींस मिलिट्री रैंक एंड फाइल, या हो सकता है अपने जो एक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी ये सोचो कि एक थर्ड फोर्स होनी चाहिए, एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए. एंड जब ये बयानिया बनाया जाता है कि थर्ड फोर्स, ये वहाँ से आ रहा है, ये हमीद गुल से आ रहा है. इनफैक्ट अगर आप हमीद गुल की इनिशियल स्पीचेस देखें, 90s में उनकी बातें देखें, आपको लगेगा कॉपी पेस्ट वो बातें हो रही हैं जो इमरान खान ने आगे जाकर की. तो इमरान खान की जो अर्ली पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई थी वो हमीद गुल ने की थी टू ब्रिंग हिम इनटू पॉलिटिक्स. अगर आपको लगता है कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये बायस्ड हूँ, तो पाकिस्तान की तारीख में जो मोस्ट पाकिस्तानीज वुड अग्री कि सबसे अजीम पाकिस्तानी जो आए हैं, सबसे अच्छे पाकिस्तानी जो आए हैं, जिनकी अच्छाई पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता टिल टीएलपी वाज क्रिएटेड, इज़ अब्दुल सत्तार ईदी. अब्दुल सत्तार ईदी हैज़ बिन ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने कैमरा के सामने बोला है कि उनके पास इमरान खान और हमीद गुल आए थे और इन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ मिल जाएँ और हम बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उसको गिराएंगे बाय पब्लिक एजिटेशन। इमरान खान की एक पॉपुलैरिटी थी 92 वर्ल्ड कप की वजह से, अब्दुल सत्तारीदी की क्रेडिबिलिटी भी है, पॉपुलैरिटी भी है, तो वो इस्तेमाल मिलिट्री एक्स मिलिट्री हमीद गुल, उनका इरादा था कि इस पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक एजिटेशन करेंगे जिससे सिविलियन गवर्नमेंट गिर जाए। आपको एक ब्लूप्रिंट भी अब नज़र आ रहा है कि किस तरह सिविलियन गवर्नमेंट्स गिरा दी जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर फिर बात की जाती है कि अगर 90s में ये सोच थी या ये फैसला कर लिया था तो उनको क्यों फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। 99 में कू हो जाता है, मिलिट्री कू हो जाता है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ पावर में आ जाते हैं। तो अगर वो हम कहते हैं कि मिलिट्री का एक प्रोजेक्ट भी था तीसरी पार्टी बनाना, वो वहीं पे स्टॉल हो जाता है। एंड पीपल हु थिंक आई एम क्रिटिकल ऑफ पीटीआई, आप मेरी सारी वीडियोस देख लें, मेरी अयूब खान के बारे में जो राय है, मेरी ज़ियाउल हक के बारे में जो राय है, मेरी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में जो राय है, मिलिट्री गवर्नमेंट्स के मैं बुनियाद से उनके ख़िलाफ़ हूँ, प्रिंसिपल से ख़िलाफ़ हूँ कि ये तो होनी ही नहीं चाहिए। और मेरी नज़र में, और इस वीडियो में मैं बताऊँगा क्यों, पीटीआई हिस्टोरिकली हैज़ बिन द पॉलिटिकल विंग ऑफ द मिलिट्री। तो ये 9th में आउट ऑफ नोवेयर नहीं हुआ, इसकी एक पूरी तारीख है। तो जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ जाते हैं पावर में तो फिर पीटीआई नहीं आ सकती ना पावर में, इमरान खान नहीं आ सकते पावर में। अगेन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ इज़ ऑन द रिकॉर्ड टू से के इमरान खान ने मुझे बोला था मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें। अब ये पीटीआई थोड़ी हिस्टोरिकल रीराइटिंग करती है, कहती है कि नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ़र हुई थी प्राइम मिनिस्टरशिप और मैंने रिफ्यूज़ कर दी। आप जाकर उस शुरू की सारी तस्वीरें देख लें, इमरान खान मुशर्रफ के साथ खड़े हुए हैं, जमात इस्लामी मुशर्रफ के साथ खड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान एंटी मुशर्रफ थे या वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थे, वो आपको मुशर्रफ के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, भले उनके प्राइम मिनिस्टर ना बने हों। मुशर्रफ तो कहते हैं मैं हंसना शुरू हो गया था जब इमरान खान ने मुझे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बना दें। जो हिस्टोरिकल रीराइटिंग की जाती है, अब अगर ये भी आप अनपैक करना शुरू करें कि जब कहा जाता है 22 साल की स्ट्रगल, पहले 10 साल तो ये देख लें कि हमीद गुल टू जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कहा जाता है कि नहीं वो एंटी मुशर्रफ थे वो, और जिस चीज़ ने इमरान खान को इनिशियली लाइमलाइट में लेकर आए वो थी कि एंटी ड्रोन प्रोटेस्ट। अब तो इस बारे में बहुत लिखा भी गया है, अब तो इस बारे में इंफॉर्मेशन भी हमारे सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान मिलिट्री की जो पॉलिसी थी वो एक तरफ अमेरिका, जिसको डबल गेम कहता है, वो एक तरफ तो वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के एलाय थे, उनके साथ थे, पर साथ ही साथ वो ड्रोन पॉलिसी के भी अगेंस्ट थे। उसमें वो अपनी चीज़ें भी मनवाना चाहते थे, अपने टारगेट्स को टारगेट करना चाहते थे, अपने एसेट्स को बचाना चाहते थे। तो वो ही एंटी ड्रोन प्रोटेस्ट फ्यूल कर रहे थे। अगेन, ये आपको कांस्टेंट मिलिट्री स्ट्रेटजी में मिलेगा कि ज़ियाउल हक अमेरिकन एम्बेसी पे जो हमला होता है वो भी सरकमस्टांशियल एविडेंस वहाँ मिलता है कि उसके पीछे या उस प्रोटेस्ट के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट ही थी। और साथ ही साथ वो अमेरिका को फिर कहता है कि देखे ना, आवाम एम्बेसी जला देगी, इनको कंट्रोल करने के लिए मैं हूँ तो हमें पैसे चाहिए। सिमिलरली इमरान खान, अगेन यहाँ पे मेरे पास एविडेंस नहीं है या हार्ड एविडेंस नहीं है इस बात का, लेकिन बयानिया जो है कि वो एंटी मुशर्रफ थे क्योंकि वो एंटी ड्रोन थे या वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज दैट At that time, that is what the establishment wanted. The establishment wanted कि जी public agitation हो, अमेरिका पे pressure डाला जाए, हम जो चीज़ें चाह रहे हैं मनवाना वो मनवाई जाएं। फिर 2008 हो जाता है, उसमें PPP की government आ जाती है। अब इधर जो important चीज़ हुई है वो हुई है charter of democracy, even though बेनज़ीर भुट्टो को assassinate कर दिया जाता है। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में PMLN और PPP फैसला करते हैं कि अब जो 90s में हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया था, हम जो एक दूसरे की गवर्नमेंट गिरा रहे थे या हमेशा मिलिट्री को एक ऑप्शन दे रहे थे कि हमें इस्तेमाल कर लो दूसरे के ख़िलाफ़, ये हम आइंदा नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की जो दो सबसे बड़ी पार्टीज़ हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि हम अब एक दूसरे की गवर्नमेंट्स नहीं गिराएंगे, डेमोक्रेसी को चलने देंगे। एंड आई गेट इट कि मेमोगेट हुआ, लॉयर्स मूवमेंट हुई, नवाज शरीफ PMLN PPP की कोएलिशन फ्रॉट हुई, टूटी बनी, तो वो इतनी कोई परफेक्ट मैरिज नहीं थी या इतना कोई परफेक्ट एग्रीमेंट नहीं था, बट स्टिल कंपेयर टू व्हाट वी सॉ इन द 90s वो हमें चीज़ नहीं नज़र आई। तो इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि भाई अब जो पॉलिटिक्स होंगी पाकिस्तान में या जो अब जो पॉलिटिक्स होती हुई हमें नज़र आ रही हैं, ये दोनों बड़ी पार्टीज़ अगर मिल गई तो हमारी जो स्पेस क्रिएट हुई हुई है वो कम होगी। अगेन, हम लोग इन एब्सोल्यूट टर्म्स बात करते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी कब, पाकिस्तान में तो हमेशा से ही मिलिट्री रूल था. यस आई एग्री विथ यू, बट आप चीज़ों को एक लेयर में समझें ना. अगर आप कहते हैं कोई चीज़ रेड है तो जो पिंक के करीब है लाइट सा वो भी रेड है, जो क्रिम्सन डीप रेड है वो भी रेड है. तो ये चीज़ें एक स्पेक्ट्रम पे होती हैं. तो 2008 के बाद से, वेदर दैट बी दी 18th अमेंडमेंट, वेदर दैट बी अ पीसफुल सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर, डेमोक्रेसी ने इंच बाय इंच थोड़ी स्पेस लेने की कोशिश ज़रूर की थी. तो उसमें एक मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग थी, एक सोच थी, एक समझ थी कि इन अ पोस्ट मुशर्रफ वर्ल्ड वेल पीपीपी और पीएमएलएन जो हैं वो साथ मिल गए हैं, तो हमें एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी या एक अपना पॉलिटिकल फेस या एक थर्ड ऑप्शन चाहिए. और 2011 का जो जलसा है उसमें कई लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि उसमें एसआई के लोग भी थे, फैसिलिटेट भी कर रहे थे. इसमें इंटरेस्टिंगली आप जाके अगर हिस्ट्री देखें तो जहांगीर तरीन अपनी पार्टी भी एक लॉन्च करना चाहते थे. जिस दिन जहांगीर तरीन कुछ 10 साल बाद किताबें लिखेंगे और सब बताएंगे तो शायद वो बताएंगे कि किसने उनको कहा था कि आप इमरान खान के साथ मिल जाएं. 2011 में जलसा होता है, बहुत बड़ा जलसा होता है लाहौर में, एंड दैट्स द प्रॉपर लॉन्च ऑफ पीटीआई एज़ वी नो इट. उससे पहले इट वाजंट द पीटीआई दैट वी नो टू बी टुडे. वो जब लोग कहते हैं कि भाई उनको फॉरेन प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना दिया, ये मुबशर जैदी ही इसी स्टूडियो में आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है कि कई सारी देगें जो हैं बिरयानी की वो पका रही होती हैं कि कब किस पे दम लग जाए और उसको हम इस्तेमाल कर लें. सो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लारे लप्पे दिए जाते हैं कि भाई अगले प्राइम मिनिस्टर आप बन सकते हैं, आपके अंदर एक पोटेंशियल है, हो सकता है 10 साल बाद आप प्राइम मिनिस्टर हो, सकता है 15 साल बाद आप प्राइम मिनिस्टर हो. तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो ग्रूम करते रहते हैं. इट्स नॉट लाइक दे ओनली पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट. व्हाट मेक्स इमरान खान यूनिक इज के हम उनको कंपेयर करते हैं कि सारी पार्टी गेट नंबर 4 की पैदावार है. थोड़ा अनफेयर है कंपेयर करना, बिकॉज जुल्फिकार अली भुट्टो बिल्कुल अयूब खान की कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन उनको उस कैबिनेट से निकाल दिया गया. और फिर जब 1970 के वो इलेक्शन लड़े हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन लड़े हैं. ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे मिलकर या उनको फैसिलिटेट कर रही थी उस इलेक्शन में. इट्स व्हेन मुजीबुर रहमान वन द इलेक्शन एंड द इस्टेब्लिशमेंट थॉट के अच्छा दी बेहतर ये है एज़ कम्पेयर टू मुजीबुर रहमान. उस पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, वीडियोज़ बना चुके हैं क्यों. दैट्स वेयर जुल्फिकार अली भुट्टोज़ मिस्टेक इज़ ऑल्सो देयर के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बयाने को एक पोलिटिकल लेजिटिमेसी दी, आवाम में जाकर उसको बेचा. वो उनकी गलती है, पर ऐसा नहीं है कि 1970 के जो इलेक्शंस हैं वो भुट्टो के फेवर में इस्टेब्लिशमेंट रिक कर रही थी, वो भुट्टो के ख़िलाफ़ ही इस्टेब्लिशमेंट रिक कर रही थी. नवाज शरीफ ऑन दी अदर हैंड जी बिल्कुल, ज़ियाउल हक उनको लेकर आए, उनको ग्रूम किया. ज़ियाउल हक और नवाज शरीफ का जो रिलेशनशिप है या जो ग्रूमिंग है इट्स अ लॉट मोर देन व्हाट अयूब खान एंड जुल्फिकार अली भुट्टोज़ वाज. फिर IGI के फेवर में 1987 के इलेक्शन रिक करने की कोशिश की गई, वो पीपीपी इतनी पॉपुलर थी कि वो नहीं हो सके. और फिर 2 साल बाद जब वापस इलेक्शंस हुए फिर नवाज शरीफ IGI की फेवर में इलेक्शंस हुए. अब अगर आप असगर खान केस की डिटेल्स पढ़ लें, खुला खुला आपको बता देते हैं कि भाई गुलाम इसहाक खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI, दे वर ऑल इन्वॉल्व इन गिविंग मनी. बैंक्स को इस्तेमाल किया गया कि ये पैसे इस्तेमाल हो रिगिंग में, करप्शन में, नवाज शरीफ को पावर में लाने के लिए. तो वो आपको सॉलिड एविडेंस मिल रहा है वहाँ पर कि जी नवाज शरीफ के फेवर में इलेक्शन रिग किए जा रहे हैं. बट दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड इन 1997 में जब इलेक्शन हुए हैं, जब नवाज शरीफ 2/3 जीत कर आए हैं, तब तक उनकी इस्टेब्लिशमेंट से फॉलिंग आउट हो चुकी थी. लेकिन उस वक्त क्योंकि इमीजिएटली बेनज़ीर से फॉलिंग आउट हुई थी, बेनज़ीर की गवर्नमेंट डिसमिस की गई थी, सो द प्लान वॉज टू एलिमिनेट PPP. तो वो जब इलेक्शन से एलिमिनेट की गई तो वोटर्स के पास PMLN के अलावा बहुत कम ऑप्शंस थे, कोई मेजर ओपोनेंट उनका था ही नहीं, जिसकी वजह से नवाज शरीफ 2/3 लेकर आए. इस तरह पाकिस्तान की तारीख में मैंने तो कभी नहीं देखा. जी बिल्कुल, कुछ पार्टीज़ हैं जिनकी एक इंस्टीट्यूशनल रकबत होती है और वो साथ साथ रहते हैं, या कुछ लोन वॉरियर्स हैं जिस तरह शेख रशीद हो गए, अब हाल ही में चौधरी ब्रदर्स रहे हैं उस कैटेगरी में. फ्रॉम वन ISI चीफ टू दी अदर, जिस तरह इमरान खान, प्रोजेक्ट इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रांसफ़र हुई है एज एन ऑफिशियल मिलिट्री प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट, वो मुझे तारीख में एटलीस्ट नज़र नहीं आता. तो आप हम 90s में देख रहे हैं कि हमीद गुल के साथ थे, उसके बाद फिर पोस्ट मुशरफ अगर हम देखें तो जनरल शुजा पाशा जो हैं, अब तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जनरल शुजा पाशा वॉज इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग PTI, वॉज इन्वॉल्व इन द 2011 जलसा. इसमें इंटरेस्टिंगली पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान आजकल मैं पढ़ रहा हूँ तो मोहम्मद वसीम लिखते भी हैं कि चौधरी ब्रदर्स जो हैं वो मुशर्रफ के पास जाते थे कंप्लेन करने के जो आयशा है वो हमारे इलेक्टेबल्स तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डाल रही है. तो ये गेम्स तब से चल रहे हैं. एंड अगेन वो जो देगों वाली बात है वो बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए. चलें इसको स्पेकुलेशन कह लें, पर अगर मुस्तफ़ा कमाल को वापस लेकर आए थे या वो ख़ुद वापस आए थे, चलें अज्यूम करें उनको लेकर आए थे, तो ऐसा तो नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उनको वापस लेकर आए थे. हो सकता है उनको बोला हो कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं. फिर अब जब MQM को जोड़ा गया है तो किसने जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, किस लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, गवर्नमेंट बनाने के लिए कोएलिशन पार्टनर, तो ज़रूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का ही ओहदा अवेलेबल है. ये जो जूनियर पार्टनर्स, कोएलिशन पार्टनर्स, PMLQ का जो रोल रहा है, इस तरह की भी पार्टीज एस्टेब्लिशमेंट के साथ रख कोएलिशन में रहती हैं, उनके रिश्ते रहते हैं, और हो सकता है फिर यही पार्टीज़ ग्रो होकर कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाएं. अगर तो हम अज्यूम करें कि मुस्तफ़ा कमाल को लाया गया था इसी वजह से, तो अगर 22 साल बाद मुस्तफ़ा कमाल प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि फिर मुस्तफ़ा कमाल को फ़ौरन ही प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना दिया. उनकी 22 साल की स्ट्रगल है. अगेन मुझे नहीं पता कि कौन सी खान साहब की 22 साल की स्ट्रगल है जिस तरह हम देख रहे हैं. सो 2011 में जलसा होता है, उसके बाद 2013 का इलेक्शन होता है. 2013 का जो इलेक्शन रिज़ल्ट है, अगेन हर पाकिस्तान के तारीख में इलेक्शंस में रिगिंग होती है, लेकिन अगर अभी जो फ्रॉड हुआ है इलेक्शन 2024 का उससे अगर आप कंपेयर करें तो मतलब ऑलमोस्ट आप कंपेयर भी नहीं कर सकते कि 2013 का इलेक्शन रेडिकली बेटर था फ्रॉम द 2024 इलेक्शंस, फ्रॉम द 2018 इलेक्शंस. तो जितनी इनकन्सिस्टेंसीज थी, जितनी रिगिंग थी, यू कांट कंपेयर इट टू व्हाट हैपेंड इन 2018 एंड यू कांट कंपेयर इट टू व्हाट हैपेंड इन 2024. मोर और लेस ओवरऑल 2013 इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था वो रिफ्लेक्ट करता था पब्लिक मैंडेट क्या है. अब यहाँ पर असल जो मिलिट्री और PTI की रिलेशनशिप है वो इंटेंसिफाई करती है. अब इस रिलेशनशिप को बियॉन्ड जिस पर्सनैलिटीज़ भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो हमारे मसले मसाइल हैं ओवरनाइट नहीं पैदा होते. ये जिन जिन चीज़ों को हम गलत समझते हैं, अगर मीडिया आज कंट्रोल्ड है, बिल्कुल कंट्रोल्ड है, 100% कंट्रोल्ड है, मीडिया के पास आज़ादी नहीं है, मीडिया के पास कई चीज़ें वो नहीं कह सकते, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स मीडिया के अंदर हैं, मैं इन सब बातों पे एग्री करता हूँ. पर अगर हम लेट्स टेक इट बैक टू 2014, एंड अगेन दिस इज़ वेयर आयरनीज ऑफ हिस्ट्री ऑलमोस्ट सीम अम्यूजिंग टू मी एज वेल. हामिद मीर पे गोली चला दी जाती है, एक असैसिनेशन अटैम्प्ट होता है. हामिद मीर कहते हैं कि जी, हामिद मीर के भाई इनफैक्ट कहते हैं कि ISI जो चीफ हैं वो इसके पीछे हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम. अब जियो जो है इट पुट्स दैट न्यूज़ ऑन. तो जब इमरान ख़ान पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ था, इमरान ख़ान ने भी ब्लेम मिलिट्री ISI पर डाला और वो ख़बर चली. तो अगर आप कहते हैं कि वो ख़बर चलनी चाहिए थी, उस पर प्रोब होना चाहिए था, तो 2014 में भी यही नहीं होना चाहिए था. अगर तो मिलिट्री चाहती थी कि अब जियो ने ये किया है, जियो के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाए, पब्लिक जो है वो जियो के अगेंस्ट हो जाए, कौन आदमी फोरफ्रंट पर आया टू डिफेंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, टू से कि जियो ने जो काम किया है ये ट्रांसमिशन चलाकर, ये तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये तो इंडिया से मिले हुए हैं, ये जो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं ये वो लोग हैं. आयरनी देख रहे हैं आप हिस्ट्री के, कि उस वक्त जो मिलिट्री का बयानिया था, जो मिलिट्री चाहती थी प्रमोट करना, वो इमरान खान ने आकर पब्लिक को बेचा. जो मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि पोस्ट 1970 जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था, जो इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सेंटिमेंट चाहती थी, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जलसों में जाकर बेचा. उसी तरह हामिद मीर को जब गोली लगी है, जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था, जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, वो इमरान खान ने आकर आपको बेचा. तो अगर हम कहते हैं जी मीडिया आज उस पर कदघने लगी हुई हैं, तो ये 2014 में ये शुरू हुआ. खैर शुरू होना गलत बात है, हमेशा से ही कदघने मसले मसाइल थे, बट जो मीडिया ने एक स्पेस अपने लिए कार्व आउट की हुई थी, अगेन शेड और स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, वो डेफिनेटली इमरान खान के रोल ने रिसीड की, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द असैसिनेशन ऑफ हामिद मीर, राइट, इट्स ऑल्सो डॉन लीक्स. जब डॉन लीक्स हुआ है, द मैन हु वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ सेइंग कि ये एंटी पाकिस्तान हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और डॉन और जियो के ख़िलाफ़ जो पूरी कैंपेन्स चलाई गई, दैट मैन वॉज इमरान खान. तो आपने अपने जो दो सबसे बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, जंग और डॉन, उनको वीकन करके, मीडिया के लिए जो स्पेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करके, मिलिट्री का जो बयानिया है उसको एक्सपैंड किया, इमरान खान ने किया. तो आज जब वो एक्सपैंड और ज़्यादा होता जा रहा है, तो एटलीस्ट इन रीसेंट टाइम्स या एटलीस्ट इन द पास्ट डेकेड, ये जो श्रिंकिंग स्पेस फॉर मीडिया फ्रीडम है एंड एक्सपैंडिंग स्पेस फॉर द मिलिट्री है इन द मीडिया, वो इमरान खान ने फैसिलिटेट की ना. आजकल हामिद मीर जो हैं वो इमरान खान के फेवर में हैं, या एटलीस्ट जो बातें करते हैं वो सही करते हैं. इमरान खान के साथ आज बुरा हो रहा है, पीटीआई के साथ जो बुरा हो रहा है, सबको उस पर आवाज़ उठानी चाहिए. और पीटीआई सपोर्टर्स जो हैं वो हामिद मीर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बट यही हामिद मीर हैं जिन्होंने कहा था कि पीटीआई के दौर में उनकी और उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान उस तरह हरास हुआ जिस तरह मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के टाइम पे भी नहीं हुआ था. तो ये भी एक सच्चाई है ना कि जो 2014 से सिलसिला शुरू हुआ जियो के ख़िलाफ़, फिर जियो के ओनर को जेल में डाला गया, फिर डॉन के ख़िलाफ़ डॉन लीक्स, उसके बाद जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई है तो फिर मीडिया के लोगों पर कदगने लगाना, जर्नलिस्ट को उठाना, अब सारा एलम पे गोली चली, ये स्पेस श्रिंक होना शुरू हो गई थी. एंड अगेन, प्लीज़ लेट नॉट परफेक्शन बी दी एनिमी ऑफ गुड. इस तरह की बेसिक सिंपल बातें मत किया करें कि कब आज़ादी थी मीडिया की, अगर आप कह रहे हैं अभी नहीं थी. सर, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर 2008 के बाद से मीडिया 13 से 19 पे चली गई थी, तो 19 से 9 तक लाने में जो सफ़र है उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ बटाया इमरान खान ने. मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है उसको पब्लिक में आम किया, पॉपुलराइज किया इमरान खान ने. सिमिलरली जिस तरह जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है कि आप हमारा दौर ना देखें, आप मिलिट्री रूल ना देखें, ये दो पार्टीज़ हैं, इन्होंने पाकिस्तान बर्बाद किया है, खा लिया है, ये दोनों दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं, बाकी तो सब कुछ अच्छा है, ये पीटीआई का जेनेसिस है, ये वजूद पीटीआई की ये है. और ये फंडामेंटली झूठ है. काफ़ी लोग कहते हैं भाई आप क्यों नहीं पीटीआई को सपोर्ट करते, भाई जो उनका रीज़न टू एग्जिस्ट है, जिस बयानिए के बेसिस पर वो अपनी लेजिटिमेसी ड्राइव करने की कोशिश करते हैं या पॉपुलैरिटी ड्राइव करते हैं, मैं वो बयानिया ही झूठ है सीधा सीधा. आप मुझे नंबर्स करके दे दें कि भाई कौन से 70 साल हैं जो पीएमएलएन और पीपीपी ने रूल किया है. सो एक तरफ मीडिया जो फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्ट किया, वो बयानिया इमरान खान ने बेचा, साथ ही साथ 2014 का जो धरना हुआ है, यहाँ से डेमोक्रेसी की जो स्पेस है पाकिस्तान में वो रिसीड होना शुरू होती है. इससे पहले मेमो गेट भी हुआ था जिसके खिलाफ भी इमरान खान ने बात की थी, लेकिन 2014 का धरना इज़ द मेन थिंग. अब ये ताहिरुल कादरी जो हैं वो भी कह चुके हैं कि लंदन प्लान बना था कि भाई हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे, जिसमें इमरान खान इन्वॉल्व थे. एजाज सैयद जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर चुके हैं कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम और इमरान खान की मीटिंग हुई थी लंदन में. 2014 का जो धरना था, आई थिंक एट दिस पॉइंट तो किसी को भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे कौन था, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी. तो हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी होनी चाहिए, वोट की इज्जत होनी चाहिए, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उन लोगों को कानून बनाना चाहिए, इन लोगों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए. तो अब पार्लियामेंट को वीकनिंग की अगर हम बात करें, लिटरली आपने पार्लियामेंट के बाहर धरना देकर हमला कर दिया पार्लियामेंट के ऊपर, हमला कर दिया पीटीवी के ऊपर, हमला कर दिया प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर. इसी कुर्सी पर फवाद बैठे हुए थे, उन्होंने बोला वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर थे. उन्होंने जाके जब सिक्योरिटी से पूछा कि भाई आप रोकेंगे नहीं अगर ये प्रोटेस्टर्स जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ आ रहे हैं, तो बोला हमारे पास ऑर्डर्स हैं, हम नहीं रोकेंगे. सोचें अगर वो प्रोटेस्टर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसकर प्राइम मिनिस्टर हाउस को जला देते, या पार्लियामेंट में घुस के पार्लियामेंट को जला देते, क्या इज्जत रह जाती इस मुल्क की. हम कहते हैं भाई इन इंस्टीट्यूशंस की इज्जत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकी हुई थी, मीडिया के अंदर डंडे पड़ रहे थे, रिपोर्टर्स हरास हो रहे थे, ये इज्जत है. तो जो आपके सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो आपने जलील करके रख दिया ना 2014 में, और पूरे मुल्क ने देखा रिजल्ट क्या निकला उसका, कि जो सिविलियंस के पास स्पेस थी, जो गवर्नमेंट के पास स्पेस थी, वो हुई श्रिंक. और जो मिलिट्री के पास स्पेस थी, जो राहिल शरीफ के पास स्पेस थी, वो बढ़ गई. यहाँ पर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने राहिल शरीफ को कू करने का भी बोला था, वो उन्होंने नहीं किया. और अब इंटरेस्टिंगली जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो हैं, उन्होंने रिसेंट इलेक्शन से पहले जाकर स्पीच भी दी थी एक पीटीआई के जलसे में, एक फॉर्मर हेड ऑफ आईएसआई. तो ये जो एक इंस्टीट्यूशनल लाडला हैं इमरान खान, दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक. दैट्स व्हाई यू कांट कंपेयर हिम टू ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ इन दैट वे कि कोई फॉर्मर हेड ऑफ आईएसआई जाकर ये पार्टीज नहीं ज्वाइन करते या इनको प्रमोट नहीं करते या स्पीचेस नहीं करते. वो जो एक एलीट रूलिंग क्लास है पाकिस्तान की, मैंने कई वीडियोस में डिस्कस किया है, विच आई फील लाइक इज़ अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान. इट्स नॉट जस्ट दीज टू पीपल, दीज नवाज शरीफ या जरदारी उसका हिस्सा बन गए हैं, बट वो एक पूरी क्लास है जो पाकिस्तान का मसला रही है शुरू से. तो एक इंसान के अच्छे या बुरे होने से नहीं होता. अगर आप देखें पीटीआई को, असद उमर जो हैं वो जनरल मोहम्मद उमर के बेटे हैं, मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं. उमर अयूब खान जो हैं, जो पीपीपी की टिकट पे भी लड़ चुके हैं, पीएमएलएन की टिकट पे भी लड़ चुके हैं, पीटीआई की टिकट पे लड़ चुके हैं, वो अयूब खान के ग्रैंडसन हैं. अब बताएं हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फेस कौन होगा? उमर अयूब खान. हु आर यू किडिंग, राइट? गुलाम इसहाक खान, हमने कई दफ़ा इस पर डिस्कस किया, दो सिविलियन गवर्नमेंट्स उन्होंने अपने ईगो की वजह से डिसमिस की. अभी खुर्रम हुसैन आए हैं रिसेंटली पॉडकास्ट पे, वो इसके बाद आएगी पॉडकास्ट, जिस पे उन्होंने बताया कि गुलाम इसहाक खान का क्या रोल था डेमोक्रेसी को स्टाइफल करने में, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू मुल्क को कंट्रोल करने में. उनके जो ग्रैंडसन हैं तैमूर झागड़ा, वो पीटीआई का हिस्सा हैं. इजाज़ुल हक पीटीआई का हिस्सा थे, शायद अब उन्होंने छोड़ दिए, जो ज़ियाउल हक के बेटे हैं. तो ये जो एक रूलिंग क्लास एलीट पाकिस्तान की रही है, साथ साथ जो शेख रशीद जैसे लोग हैं, चौधरी ब्रदर्स जैसे लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग हैं, फिरदौस आशिक अवान, फयाज़ुल चौहान, जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के लोग रहे हैं, वो सब मिलकर आपने एक पीटीआई बना दी. तो हम कैसे ना कहें कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है? आप इनको कैसे कंपेयर करें टू अदर पोलिटिकल पार्टीज़? सो डेमोक्रेसी की जो स्पेस पहले की गई स्टाइफल 2014 में, तो जो सिविलियन स्पेस थी वो कम की गई, मिलिट्री की स्पेस बढ़ाई गई. और फिर जब 2016 आया, उसमें जनरल बाजवा हैड डिसाइडेड कि भाई नवाज शरीफ हैज़ टू गो. सलमान अकरम राजा अभी पीटीआई के लीडर हैं, वो भी इस पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने आके आपको बताया. द रीज़न आई गिव दीज रेफरेंसेज ऑफ पीपल इज़ बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव दीज कॉन्वर्जेशन विद पीटीआई सपोर्टर्स, बिकॉज आई फील लाइक के मोस्ट लोग सेंस चीज़ों का समझते हैं. ऐसा नहीं है कि वो डिलूजनल हैं या वो बिल्कुल ही कोई कल्ट लाइक फिगर में यकीन करते हैं. इट्स क्वाइट फेयर फॉर समबडी हु इज़ लाइक आई एम विद यू ऑन ऑल ऑफ दिस, बट व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़ रॉन्ग. कम्प्लीटली फेयर बात है, इससे मैं बिल्कुल नहीं डिसएग्री कर रहा. मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाए. अभी जो हो रहा है उसको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा. 2024 का इलेक्शन एक शैम था. हाइब्रिड रिजीम से हम बहुत आगे निकल चुके हैं. अभी जो रिजीम है वो क्वाज़ाय मिलिट्री रूल है. जब राणा सनाउल्लाह टीवी पे आके कहते हैं कि मोहसिन नकवी और औरंगज़ेब जो हैं उनको उन्होंने औरंगज़ेब को उन्होंने ही लगाया जिन्होंने मोहसिन नकवी को लगाया है. तो जब रूलिंग पार्टी पीएमएलएन का एक सीनियर फिगर फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर आके कहते हैं कि मिलिट्री जो है, या अलूड करते हैं कि मिलिट्री जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर लगा रही है, तो हम किससे मजाक कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं या ये कोई डेमोक्रेटिक सेटअप है? सो दैट स्पेस फॉर डेमोक्रेसी स्टार्टेड श्रिंकिंग फ्रॉम 2014, और ये बहुत मुश्किलों से इंच बाय इंच स्पेस रीगेन की गई थी 2008 से लेकर 2017 तक. एक आपने पीसफुल सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर देखा, पाकिस्तान का पहला, मतलब 70 साल बाद पाकिस्तान का पहला पीसफुल सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर है. इससे पहले तो हमारा पीसफुल मिलिट्री ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया था जब अयूब खान ने याया खान को पावर दे दी थी. अगेन बाय नो लॉ, बाय नो कॉन्स्टिट्यूशन डिड ही हैव एनी राइट इन द वर्ल्ड टू डू दैट, बट वो पहले हो गया. सिविलियन गवर्नमेंट्स का ट्रांसफ़र बाद में हुआ. थिंग्स लाइक 18 अमेंडमेंट वर पास. 18 अमेंडमेंट के मिलिट्री खिलाफ थे क्योंकि वो जो बजट्स अवेलेबल थे वो फेडरल लेवल पर कम हो जाते हैं डिफेंस के लिए, मिलिट्री के लिए, और वो प्रोविंसेस के पास चले जाते हैं ताकि वो अवाम में तकसीम हो. किसने 18 अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ पूरा बयानिया चलाया? आज अगर फैसल वाडा जो हैं पीटीआई वाले कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट का माउथपीस हैं, ये नए शेख रशीद हैं, तो यही फैसल वाडा पीटीआई का हिस्सा थे ना, जो बूट लेकर टेबल पर रख दिया था उन्होंने. अगर आवाम को बताया जा रहा है 18th अमेंडमेंट गलत है, 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, इसको रिवर्स होने की ज़रूरत है, ये मिलिट्री चाहती है, ये आवाम में कौन बेच रहा है? ये इमरान खान और PTI बेच रही है। मेरी नज़र में 18th अमेंडमेंट को रिवर्स करना वीकन करेगा पाकिस्तान को। वो जो लोग थोड़े से एम्पावर हुए हैं उनको ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। 18th अमेंडमेंट का अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो ये है कि प्रोविंशियल लेवल से वो लोकल लेवल तक नहीं जाती। ये नहीं है कि वापस फेडरल लेवल पर आप लेकर जाएं। अगेन मैंने तारीख पर बहुत सारी सीरीज़ की हैं जिसमें मैंने बताया कि सेंट्रलाइजेशन, ये ऑब्सेशन विथ सेंट्रल पावर, फेडरल पावर, इसने कितना नुकसान किया है पाकिस्तान का। फिर 2017 में डेमोक्रेसी को डिरेल करने के लिए, जो मैं सलमान अकरम राजा की बात कर रहा था, पैनमा का केस होता है। सलमान अकरम राजा ख़ुद कहते हैं कि बिल्कुल एक शैम केस था वो। सलमान अकरम राजा PTI के लीडर, इमरान खान पावर से निकलने के बाद तस्लीम करते हैं कि जनरल बाजवा ने 2 ब्रिगेडियर्स भेजे थे GIT में। इमरान खान तस्लीम कर रहे हैं कि मिलिट्री ने GIT में इंटरफियर करके एक अपना जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो लेकर आए। तो आपने एक सिविलियन, एक मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई करवाया। साथ ही साथ TLP बनाई गई। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट हु वी लाइक, जो हमें अच्छा लगता है उसको लाने के जो कॉन्सिक्वेंसेस इस मुल्क ने सफ़र किए हैं वो तो आप देखें ना। जो TLP फिनोमेना है, जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जो अब मिलिट्री से भी नहीं संभाला जा रहा, किसने बनाई? TLP बनाते हैं आप, एक ब्लास्फेमी कैंपेन चलती है PMLN के ख़िलाफ़, एंड एज वी कंडेम दैट, वी इक्वली कंडेम जो ब्लास्फेमी कैंपेन इमरान खान के ख़िलाफ़ भी चलाई गई है। मियां जावेद लतीफ़ ने कोई बात की थी जो बिल्कुल नाजेबा थी, जो इद्दत वाला केस था, डिस्कस्टिंग केस था, हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ 2017 में जो कैंपेन चलाई गई, ये इस तरह के फतवे दिए गए कि PMLN को वोट करना हराम है, जो PMLN को वोट करेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इस तरह की स्पीचेस करवाई गई। साथ ही साथ एहसन इकबाल पर गोली चली, अबरार हलक ने TV पर आके उस चीज़ का मजाक उड़ाया कि आपकी तो इतनी पॉपुलैरिटी, आप जाने आते गोलियां चलती हैं। आप सोच सकते हैं, मतलब हम एक पार्टी को इंसान समझते हैं, दूसरी पार्टी को इंसान नहीं समझते। इमरान खान को जब गोली लगी, अगर सब TV पर जाके हंस रहे होते, कह के मार रहे होते, तो कैसा लगता PTI सपोर्टर्स को? बट दिस वॉज हैपनिंग टू PMLN एंड समहाउ वी थॉट दैट वॉज फाइन। जब रेंजर्स कोर्ट में घुस के हनीफ अब्बासी को अरेस्ट कर रहे थे, हमें वो ठीक लग रहा था। सो डेमोक्रेसी की स्पेस कम, मिलिट्री की स्पेस ज़्यादा, विच कल्मिनेट्स इन 2018 का एक रिग्ड इलेक्शन। इट वॉज कॉल्ड द डर्टीएस्ट इलेक्शन इन पाकिस्तान इन ईयर्स। सब ने उस पर क्वेश्चन मार्क्स डाले। हम जब फॉर्म 45 की बात करते हैं तो 90% फॉर्म 45 तो 2018 में मिले ही नहीं थे। हर बैलेट मिलिट्री हैंडल कर रही थी, ओवरसी कर रही थी, RTS बैठ चुका था, रिजल्ट्स 2 दिन तक आए नहीं थे। बट क्योंकि मीडिया बिल्कुल कंट्रोल था, ये सारी बातें हमें नहीं बताई गई। उसके बाद इलेक्टेबल्स भी ख़रीदे गए, इंडिपेंडेंस भी ख़रीदे गए, जहांगीर तरीन का जहाज़ भी चला, तो कंप्लीट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी हैपेंड। इसमें एक अल्टरनेट रियलिटी में जो PTI सपोर्टर रहते हैं वो कहते हैं कि ये सब जो रिगिंग की गई, हम मानते हैं कि मिलिट्री ने की, पर इसलिए की कि PTI की सीट्स कम हो जाएं। अब बंदा हंसे नहीं तो क्या करे कि भाई एक पार्टी जिसको आप एटलीस्ट फॉर द पास्ट 7 ईयर्स रीलॉन्च करने के बाद पाल रहे हैं, बना रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, उनके लिए TLP बना रहे हैं ताकि PMLN की वोटर बेस पॉपुलैरिटी कम हो, पैनमा कर रहे हैं, कोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं कि वो पावर में आ जाए, फिर उसके बाद आप RTS बिठा देते हैं कि अच्छा यार ये पावर में ना आए। जस्ट फॉर मी इट मेक्स ज़ीरो सेंस, बट अगेन बयानिया बहुत आसानी से बिक जाता है। तो जो वन पेज उस टाइम बात होती है कि भाई वन पेज गवर्नमेंट है, वो वन पेज ये था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, ये तीनों सारे सेम पेज पर थे, एक साथ थे। साकिब निसार, जनरल बाजवा, इमरान खान, ये नई इस्टेब्लिशमेंट वन पेज बनकर उभर कर आई, जिसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है, ना वोट मैटर करता है। ऑल दैट मैटर्स इज़ के अब हम लोग इन पावर हैं और हम लोग वो करेंगे जो हम चाहते हैं। सो डेमोक्रेसी की स्पेस, आज हम कहते हैं कि हम क्वाज़ा मिलिट्री रूल में हैं। 2014 से अगर उसको ट्रेस करें तो 2014 का धरना, देन 2017 से कंटिन्यूएशन श्रिंकिंग ऑफ दैट स्पेस, एंड फॉर मोस्ट ऑफ दैट हिस्ट्री टिल 2022 एटलीस्ट इमरान खान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में डेमोक्रेसी के लिए स्पेस श्रिंक कर रहे थे. तो हमने मीडिया डिस्कस कर लिया, हमने डेमोक्रेसी डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की जब हमने बात की थी, इमरान खान की गवर्नमेंट में पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको मजाक बना दिया गया था. एक तरफ ठीक है इमरान खान खुद नहीं आते थे, दूसरी तरफ ऑर्डिनेंसेस, रूल बाय ऑर्डिनेंसेस हो रहा था. होना ये चाहिए कि कंसेंसस हो पार्लियामेंट में, हर किसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपको पसंद हो ना हो, पीपीपी भी बैठी है, पीएमएलएन भी बैठी है, सिंध के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे हैं, बलूच रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे हैं, आपको सबको सुनना है, एक कंसेंसस बनाना है और फिर लॉ पास करना है. पीटीआई ने बोला भाई ये तो विनीता से पार्लियामेंट की तो कोई इज्जत नहीं है, ऑर्डिनेंस बस डाली जाओ रिकॉर्ड ऑर्डिनेंसेस, मतलब मिलिट्री रिजीम्स में भी इतने ऑर्डिनेंसेस शायद पास नहीं हुए जितने पीटीआई के दौर में हो गए. दिन में एक एक दिन में 10-10, 12-12 ऑर्डिनेंसेस पास हो रहे हैं. तो आपने तो पार्लियामेंट को एक जोक बना दिया कि जो चीज़ हमें चाहिए हम प्रेसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस पास करेंगे. साथ ही साथ साकिब निसार जो हैं वो तो हम करप्शन की बात करते हैं, साकिब निसार कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे जिस बिल्डिंग में बड़े अमीर लोगों के फ्लैट थे उसको लीगलाइज किया गलत तरीके से, बनीगाला को रेगुलराइज किया बिल्कुल कौड़ियों के दाम, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट सारी वन पेज पे थी तो हमें हर चीज़ लीगल लगती है, हमें हर चीज़ सादिक एंड अमीन लगता है. तो आपने पार्लियामेंट का जो रोल है उसको श्रिंक कर दिया और पावर में जाने के बाद इमरान खान ने खुलकर आकर बोला कि जी पार्लियामेंटेरियंस को बुलाने के लिए ऐसा को बोलना पड़ता था कि इनको लेकर आ जाओ. आप सोच सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर आकर ये बात कर रहा है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करते थे पार्लियामेंटेरियंस पे प्रेशर डालने के लिए टू पास द लॉ, और इसको वो बुरा समझते हैं कि यार ये ऐसा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनको तो खुद कर लेना चाहिए, मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं थे कि ये लोग, ना मेरे कंट्रोल में जुडिशरी थी, ना मेरे, क्यों आपके कंट्रोल में अपोजिशन हो. द होल आइडिया ऑफ अ पार्लियामेंट इज टू हैव मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड टू रीच अ कंसेंसस, एक अग्री, एक डिस्कशन हो, एक एक बॉडी हो जो कंसेंसस के थ्रू अवाम की विल को रिप्रेजेंट करे. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अपोजिशन भी आपके कंट्रोल में हो, जुडिशरी भी आपके कंट्रोल में हो और बस किंग की तरह आप रूल करें. इंटरेस्टिंगली वो कहते हैं कि सुपर किंग तो बाजवा था, हर चीज़ वो कंट्रोल करता था. हम जब कहते थे कि भाई एक हाइब्रिड रिजीम है, एक पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, पीछे से हर चीज़ मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, तो हमें बुरा भला कहा जाता था. लेकिन इमरान खान ने वही बात नहीं की पावर में आने के बाद कि हर पावर तो जनरल बाजवा के पास थी और हर चीज़ जो बुरी हुई उन्होंने जनरल बाजवा के खाते में डाल दी. तो मिलिट्री इंक्रोचमेंट इनटू सिविलियन स्पेसेस ये किसने की, ठीक है? हम अगर आज कहते हैं मिलिट्री हर सिविलियन स्पेस में है, रूल कर रही है, तो ये दरवाज़ा खोला किसने इन रीसेंट टाइम्स कि ये लोग आ सकें. इसमें DW का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसमें सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ कि जिस अपॉइंटमेंट पर उस टाइम शोर हुआ था, अगेन लुक एट द प्लेसेस वेयर अवाम को कंट्रोल किया जा सकता है, नादरा डेटाबेस. तो उसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड बिलाल सैयदुल्लाह खान को डायरेक्टर जनरल बनाया PTI ने. साथ ही साथ In the past 2 years, several other military officials have grabbed important government positions which have been traditionally under civilian domain. जो civilian positions भी थी, spectrum की जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो institutions हैं आपके civilian, उनमें military encroachment को facilitate किया PTI के दौर में. 2009 में General आसिम सलीम बाजवा को CPEC का हेड बना दिया गया था, एयर मार्शल अरशद मलिक को चीफ एग्जीक्यूटिव PIA का बना दिया गया, मेजर जनरल आमिर नदीम को चेयरमैन स्पार्को बना दिया गया. इवन डिप्लोमेटिक पोजीशंस विच हैव बीन लार्जली हेल्ड बाय सिविलियंस सिंस पाकिस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947 हैव बीन टेकन ओवर बाय द जनरल. इन जनवरी खान्स गवर्नमेंट अपॉइंटेड जनरल बिलाल अकबर टू द पोस्ट ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एनवॉय. सो आज अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई इन इदारों में क्यों है मिलिट्री, तो ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई एंड वेरी ईजिली इमरान खान कैन वॉश हिज हैंड्स ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड से ये तो इन्होंने की. भाई आपने क्यों करने दी? जो पोलिटिकल अपोजिशन है आपकी, जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको वोट मिला है उनको आप जेलों में डाल रहे हैं, और जो सिविलियन पोजिशन होनी चाहिए उनमें आप मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, साथ ही साथ आईएसआई जो है वो पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रही है जब पार्लियामेंट की आपको ज़रूरत पड़े, वरना तो आप ऑर्डिनेंसेस से रूल कर रहे हैं. एंड व्हेन पीपल क्वेश्चन दिस, वेदर दोज बी जर्नलिस्ट, वेदर दोज बी लॉयर्स, वेदर दोज बी जजेस, उनके साथ क्या होता है. वकार सेठ का एक जजमेंट आया, अनफॉर्चुनेटली उनको कोविड हो गया. फैज़ाबाद पर जब काजी फैज़ ईसा का जजमेंट आता है, आप एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज देते हैं काजी फैज़ ईसा के खिलाफ, उनको हाउंड किया जाता है, उनको हाउंड किया जाता है, उनको उनकी बीवी को जलील किया जाता है. किसने फिर जुडिशरी वीकेंड की? पहले बाय क्लाउंस लाइक साकिब निसार. बताओ, डैम बना रहे, हद नहीं हो गई यार? आपके इतने पेंडिंग केसेस हैं, इतने पेंडिंग केसेस हैं, आप डैम बना रहे हो, आप पीटीआई के इवेंट्स में जाकर स्पीचेस दे रहे हो, फिर आप जहाँ जाते हो आप टीवी कैमरास बुला लेते हो, फिर आप जाके जजेस की तजलील करते हैं, किसी जज का फ़ोन फेंक देते हैं. नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस. मतलब कोर्ट से हम बात करते हैं भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आप साकिब निसार पे लगाएं ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. अगर आपने कोर्ट को एक मजाक ही बना दिया है, एक जोक ही बना दिया है, तो आपसे ज़्यादा कंटेम्प्ट कौन कर रहा है उस कोर्ट की. जो रिसेंटली लीक्ड कॉल्स भी आई हैं साकिब निसार की, जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं मरियम नवाज़ के बारे में, इट रिफ्लेक्ट्स अ सर्टन काइंड ऑफ डिस्कस्टिंग मेंटालिटी. एंड व्हेन दीज पीपल वर इन पोजीशंस ऑफ पावर व्हिच दे वर कम्प्लीटली अनडिजर्विंग ऑफ मैन ऑफ सच स्मॉल स्टैचर्स, उन्होंने जो हरकतें की हैं उसने इस मुल्क को जितना बर्बाद किया है वो डिस्कस नहीं होता. वी जस्ट ऑल आर डिस्कशंस गेट रिड्यूस्ड टू इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, इफ्तिखार चौधरी ने जो रिको डिक में किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को बिलियंस का नुकसान हुआ, वो कभी नहीं डिस्कस किया जाएगा, या इस बात पे भी सवाल नहीं उठाया जाएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को तो उन्होंने डिसमिस किया, बट उससे पहले जब मलिक रियाज ने बोला था कि मैंने अरसलान को, जो इफ्तिखार चौधरी के बेटे हैं, इतनी रिश्वत दी थी इफ्तिखार चौधरी के लिए, उस पर प्रोब नहीं हुई, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई. सो या लेट्स कम बैक टू पीटीआई स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट. तो ये जो एक गठजोड़ वन पेज है, ये आप ऑल द वे 90 से ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली 2011 से 2022 का जो पीरियड है वो एक कंटिन्यूएशन ऑफ कोएलिशन बिटवीन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड PTI being the political wing of the military establishment, Imran Khan being the spokesperson for the military establishment. यही वजह है कि वो जो पिछले दो साल में बातें कर भी रहे हैं, अगर वो सेम वो बातें हों जो मैं करता हूँ या पॉडकास्ट में होती हैं या लेफ़्ट के कुछ लोग करते हैं, उस पर किसी को यकीन नहीं होता. एटलीस्ट लेफ़्ट में से हम लोगों को उसकी वजह ये है कि उसी से बरक्स वो बातें उन्होंने 5 साल पहले की थी. जब वो हामिद मीर इल्ज़ाम लगाते हैं आईएसआई पे, तो वो मुल्क दुश्मन भी होते हैं, वो इंडिया फंडेड भी होते हैं, वो एनिमीज़ ऑफ द स्टेट भी होते हैं, लेकिन आप जब इल्ज़ाम लगाते हैं, आपको वो सारे हक चाहिए जो आप हामिद मीर से छीनना चाहते थे. अब आपको मीडिया आज़ादी चाहिए, लेकिन अपने टाइम में सब मीडिया पे कदगने लगी हुई थी. सो देन वाई एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली, वाई डिड इमरान खान गेट रिमूव्ड? भाई उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने अमेरिकन बेसिस पे एब्सोल्युटली नॉट बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. प्रीटी मच जो साइफर है वो एक जोक है एट दिस पॉइंट. मतलब सारी लॉबिंग जो इमरान खान कर रहे हैं वो अमेरिका में कर रहे हैं, अमेरिकन पॉलिटिशियंस के साथ कर रहे हैं. उनकी फ़ोन जूम कॉल भी लीक हुई जिसमें वो एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस वूमेन को कह रहे थे, मैक्सिन प्लीज़ हमारे लिए कुछ बोल दो. तो अगर तो बाइडन की जो गवर्नमेंट है उसने इनको हटाया, तो आप बाइडेन की गवर्नमेंट को आप प्लीड कर रहे हैं कि आप इंटरवीन कर लें? जस्ट डजंट मेक एनी सेंस फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट एज वेल, राइट? खैर, साइफर में हमने बहुत बातें कर ली हैं. जो फॉलिंग आउट हुई, हम इन चीज़ों को ना, द रीज़न हम सिंपलिस्टिक नोशन में बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट, हम इन चीज़ों को बहुत यूनिफाइड एंटिटीज समझते हैं. वी सॉर्ट ऑफ इग्नोर the personal egos of people at stake and their involvement. Jo conflict hui, wo is baat pe hui. General Bajwa was looking for an extension. Imran Khan wanted General Faiz to become the next chief of army staff. General Bajwa ko lag raha tha ki General Faiz mujhe undermine kar rahe hain. जनरल फैज़ हेड ऑफ़ ISI थे. तो ये इमरान खान जो हैं वो जनरल फैज़ को, जब इमरान खान, अगेन आई एम नॉट गोइंग ऑफ स्पेकुलेशन, आई एम गोइंग ऑफ थिंग्स इमरान खान सेड हिमसेल्फ, वो ISI को इस्तेमाल कर रहे थे, ISI को हेड कर रहे थे जनरल फैज़. इमरान खान ने बोला मैं ISI को पॉलिटिशियन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था. सो ही वॉज़ यूजिंग जनरल फैज़ टू कंट्रोल पॉलिटिशियंस टू गेट वॉट ही वॉन्ट्स. जनरल बाजवा को भी समझ में आ गया था कि भाई मुझे नहीं मिलेगी एक्सटेंशन, जनरल फैज़ जो हैं वो अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे. तो जब उन्होंने जनरल फैज़ को रिमूव करके नया डायरेक्टर ISI लगाया, वहाँ मसला पैदा हुआ, वहाँ इशू पैदा हुआ कि इमरान खान वाज लाइक अगर जनरल फैज़ हट गए तो मैं जो ISI को इस्तेमाल कर रहा हूँ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, वो कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा. जनरल फैज़ मेरा बंदा है, इसको अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है, मैंने ये नहीं हट सकता. दैट्स वेयर द वन पेज सॉर्ट ऑफ टोर लिटरली ओवर द पर्सनल एम्बिशंस ऑफ टू इंडिविजुअल्स. हमने जो मुल्क की बर्बादी देखी है वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की जो एम्बिशंस की टक्कर थी, जो एक इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट थी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट नहीं थी. जनरल फैज़ इमरान खान और उनकी एजिटेशन को सपोर्ट कर रहे थे, जनरल बाजवा जो हैं वो दोनों साइड्स खेल रहे थे कि मेरे पास सारे ऑप्शंस खुले रहें. या तो अगर हम चलें ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखें, अगर तो हम कहते हैं कि एंड दिस इज़ ऑल्सो माई इख्तलाफ विद PTI सपोर्टर्स, के वो इंडिविजुअल्स पे इतना फोकस करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इशूज़ हैं उसको नहीं देखते. उनकी नज़र में जनरल आसिम मुनीर दुनिया के सबसे बुरे आदमी हैं, या जनरल बाजवा दुनिया के सबसे बुरे आदमी हैं, पर जनरल फैज़ जो हैं वो हीरो हैं, मुशरफ हीरो थे, ज़ियाउल्लाह हीरो थे, अयूब खान हीरो थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हीरो हैं, शुजा पाशा हीरो हैं. जो कोई उनके बयानिए के साथ है वो हीरो है, उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है, भले वो सारे काम करें जो आप अपने मुखालिफ इंसान को इल्ज़ाम लगाते हैं. जनरल आसिम मुनीर को भी इमरान खान ने क्यों हटाया एज डायरेक्टर ISI, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर उनके पास एक फ़ाइल लेकर आए थे जिसमें इमरान खान की जो बीवी हैं बुशरा बीवी, उनकी करप्शन थी, या उनकी करप्शन पर एक इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे, या एक क्वेश्चन मार्क था, एक फ़ाइल थी, उसकी वजह से उन्होंने हटा दिया. राइट, अब ये एक वो पार्टी है जो आई थी ट्रांसपेरेंसी पर कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं. उनके दौर में कितनी करप्शन हुई वो आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देख लें कि करप्शन इंडेक्स कितना बड़ा है इमरान खान के या PTI के दौर में. उसमें नहीं पढ़ते कि कौन ज़्यादा करप्ट था, शायद उस पर एक अलग वीडियो हम बना सकते हैं अगर आप चाहें. लेकिन आपकी अहलिया की करप्शन की फ़ाइल आती है और आप क्या करते हैं, आप ISI का हेड ही हटा देते हैं उस पर. In many ways, इमरान खान is sowing, वही बीज काट रहे हैं जो उन्होंने सो किया था, उन्होंने लगाया था. काजी फैज़ ईसा को उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हाउंड किया क्योंकि उन्होंने ISI की इन्वॉल्वमेंट की बात की थी फैज़ाबाद धरना में. आसिम मुनीर को उन्होंने हटाया क्योंकि आसिम मुनीर बुशरा बीबी की करप्शन पर क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे थे. नवाज शरीफ को उन्होंने, शायद मे बी एग्जैजरेशन होगी कि मारने की कोशिश की, लेकिन ये प्लेटलेट जोक नहीं था. जो उस वक्त इन्वॉल्व थे या जो डॉक्टर से, शौकत खानम के डॉक्टर से पूछ लें. अगेन मैं आपको, बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच आउट एंड हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद PTI सपोर्टर्स, आपको आपके रेफरेंस पॉइंट्स दे रहा हूँ जिनको आप क्रेडिबल समझते हैं. आप शौकत खानम के डॉक्टर से पूछ लें कि वो प्लेटलेट्स कितने एक्चुअली रिस्की थे. साथ ही साथ उनकी बीवी, when she was on her deathbed, आपने उनका एक नेशनल जोक बना दिया, TV पे आके बोला कि लोग ड्रामे करते हैं. फिर उनकी बीवी की डेथ हो गई, उनकी बेटी को आपने उनके सामने अरेस्ट कर लिया, उनकी बेटी के कमरे में आपने घुस कर उनको वहाँ से निकाला कराची से. नाउ दीज पीपल आर इन पावर. तो ये एक पर्सनल ईगोज़, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बन गई है मोर देन इंस्टीट्यूशनल इशूज़. एंड आई कीप वॉन्ट टू गो बैक टू institutional ideas, and somewhere somehow PTI historically has represented those institutional ideas. अगर मैं कहता हूँ कि 1947 से military establishment के जो certain ideas हैं that I'm against, PTI has embodied, promoted all those same ideas. तो even अगर उनकी जनरल आसिम मुनीर से conflict है, उनको बुरा समझते हैं, जो genesis है उनका, जो एंटी पीपल, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी पार्लियामेंट एक ethos है, वो तो नहीं बदलता ना उस पार्टी का, वो तो वही रहता है. भले वो आज हमें पता भी ना हो कि PTI कौन है, कौन चला रहा है, कौन है या नहीं है. साथ ही साथ जब हम करप्शन की बात करते हैं, अब लोग आसमा जहांगीर की पुरानी क्लिप चलाते हैं कि जिस दिन आपको जनरलों की करप्शन का पता चल गया आप सियासतदानों की करप्शन भूल जाएंगे। ये पीटीआई सपोर्टर्स क्लिप को बड़ा वायरल करते हैं। अगेन इसको भी आप कॉन्टेक्स्ट में रखकर अगर समझें कि आसिम सलीम बाजवा जब सीपैक के हेड थे तो एक रिपोर्ट आती है उनके करप्शन के बारे में, अब पीटीआई सपोर्टर्स उसको बड़ा शेयर करते हैं, पापा जॉन्स पापा जॉन्स पापा जॉन्स। हु वॉज द मैन हु स्टूड बाय आसिम सलीम बाजवा, हु वेंट ऑन टीवी एंड डिफेंडेड हिम? इमरान खान। जब हम रूडा में करप्शन की बात करते हैं, जब हम कहते हैं रियल इस्टेट माफिया जो है वो लैंड एक्वायर कर रहा है, कौन आदमी है जो जाके रूडा के साथ खड़ा हुआ हेलीकॉप्टर से उतर के अगेंस्ट द कोर्ट्स जजमेंट एंड सेड रूडा बने? इमरान खान। किसने करप्शन और रियल इस्टेट में एमनेस्टी दी, कंस्ट्रक्शन में एमनेस्टी दी, ब्लैक मनी को वाइट किया करप्शन का? इमरान खान। नॉट सेइंग सोली उन्होंने किया, पीपीपी पीएमएलएन मिलिट्री गवर्नमेंट इन द पास्ट सब ने यही किया है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का बयान ही आया ना करप्शन के अगेंस्ट, और फिर फैक्ट्स डोंट लाइन अप विद दैट। सो यस, दैट जनरल फैज जनरल बाजवा टसल जो है उसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब इसमें अगर तो हम कहें जनरल बाजवा वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इसने पीटीआई को बैकस्टैब किया, ऐसा नहीं है, वो भी डबल गेम खेल रहे थे। परवेज इलाही ऑन द रिकॉर्ड टू से के, पर वही परवेज़ इलाही जो कहते थे इमरान खान नैपियाँ तक बदली हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, वो बाद में जाके पीटीआई के प्रेसिडेंट बन गए। इंटरेस्टिंगली जावेद हाशमी जब पहले तो नहीं, पोस्ट रीलॉन्च 2011 के बाद पीटीआई के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि इन लोगों का प्लान था कि लोग मरे, मिलिट्री की बैकिंग थी इनको और लोग मरने से ये इंतजार फैलाना चाह रहे थे ताकि गवर्नमेंट गिर जाए, ये पीटीआई के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। फिर अब जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने कहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नैपिया तक बदलती थी इनकी। सो चौधरी परवेज इलाही ऑन द रिकॉर्ड टू से कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा था पीटीआई के साथ जाओ, पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिस इज हैपनिंग, पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का जो स्प्लिट है वो भी इसी वजह से होता है, राइट? यू सी हाउ जनरल बाजवा इज प्लेइंग बोथ साइड्स, के यार जहाँ भी चीज़ें फॉल हों मैं बन जाऊँ, जनरल फैज ना बने। वो तो इमरान खान का जो प्लान था कि जनरल फैज आ जाएंगे, फिर उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, फिर मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी, फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाएगा और हम लोग डिक्टेटोरियली पाकिस्तान पे रूल करेंगे, एंड ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड मौजा ही मौजा। वो प्लान तो थॉट हो गया, नॉट बिकॉज कोई पाकिस्तान की बेहतरी चाहते थे, अगैन पर्सनल एम्बिशन, जनरल बाजवा वॉन्टेड एन एक्सटेंशन। तो चौधरी परवेज इलाही को वो इमरान खान के साथ भेज देते हैं ताकि केओस में रहें, फ्लक्स में रहें और उसका फ़ायदा उठा के जनरल बाजवा एक्सटेंशन ले सकें। इसमें पीडीएम स्टूड फर्म एंड इसमें शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ स्टूड फर्म के जनरल आसिम मुनीर ही बनेंगे। शहबाज शरीफ रिपोर्टेडली वॉज रेडी टू केव इन एंड नॉट मेक जनरल आसिम मुनीर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बट नवाज शरीफ सेड ये लोग निकाल दें, जो करना है करें, बनना तो जनरल आसिम मुनीर ने ही है। अब इधर भी चलें स्पेकुलेशन पे नहीं जाते कि वो जो सऊदी को किसने इन्फॉर्मेशन भेजी थी थ्रू एन एम्बेसी जिससे जनरल आसिम मुनीर की रिपोर्टेडली अपॉइंटमेंट रुक सके और वो क्यों डिले आया, वो आजाद सैयद का एक बहुत अच्छी इस पर रिपोर्ट है, वो जाकर आप देख लें। ऑफिशियल उस पर पहले इमरान खान ने बोला कि जनरल बाजवा को अगर आप एक्सटेंशन दे दें इलेक्शन तक तो मैं तैयार हूँ। भाई अभी तो आप कह रहे थे दुनिया का सबसे बुरा आदमी जनरल बाजवा है, उसने तो डेमोक्रेसी डिरेल कर दी, हर चीज़ कंट्रोल में रखी, मुझे हटा दिया, फिर आप कह रहे हैं इसी आदमी को एक्सटेंशन दे दो। इंटरेस्टिंगली इमरान खान ने ये भी कहा कि मैंने मंथ्स आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस केपी और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व ही की जनरल बाजवा के कहने पर। अभी आदमी है जो आप कह रहे हैं कि सबसे बुरा आदमी है, फिर आप उसके कहने पर असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं क्यों भाई? साथ ही साथ उमर अता बंदियाल का जो जजमेंट है 63A पर, जिसकी वजह से पंजाब असेंबली पीटीआई को वापस दी गई, कंप्लीट मॉकरी ऑफ द लॉ। किसी भी आप पढ़े लिखे अच्छे लॉयर से ऑन एनी साइड पूछ लेंगे, वो कहेगा इट्स अकिन टू रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सिर्फ पीटीआई को फ़ायदा देने के लिए जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट ने एक जजमेंट दिया जिससे पंजाब असेंबली जो है वो पीटीआई के पास आ जाए। सो देन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैपन्स, आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट के ऊपर इमरान खान जलसा करते हैं, बोलते हैं सब लोग इस्लामाबाद आओ, दे डोंट गेट इनफ नंबर्स, अगेन इट्स एन इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट. एस्टैब्लिशमेंट का एक फैक्शन जो है वो अपनी पर्सनल एम्बिशन के लिए चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर अपॉइंट ना हो, ताकि या तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यू करें या उनका बंदा सामने आ जाए. एंड इमरान खान इज़ ऑन द साइड ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट, वेयर एज वन साइड इज़ ऑन जनरल आसिम मुनीर एस्टैब्लिशमेंट. जनरल आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट के बाद जो व्लॉग्स बनाए गए उन जर्नलिस्ट के जो हिस्टोरिकली एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के पेरोल पे रहे हैं, उन्होंने जिस तरह की बातें की आप सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करूँगा. मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहकर बकवास नहीं करता पैसे कमाने के लिए, तो मैं नहीं रिस्क कर सकता रिपीट करना जो उन्होंने उसमें कहा है. जाकर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें, आपको याद हो तो याद होंगे. सो दैट पीरियड व्हेन जनरल आसिम मुनीर वाज अपॉइंटेड, देयर वाज दिस अटेम्प्ट के इंटरनल कोई कू हो जाए, और इस तरह के फिर व्लॉगर्स के थ्रू बातें की गई, इस तरह के झूठ भी बोले गए कि भाई कोर कमांडर्स की मीटिंग में लोगों ने उठकर आसिम मुनीर को ये कहा वो कहा, उनके पास असल पावर नहीं है. जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो इस तरह के फ्रॉड, आदिल राजा जो खुद हवाई ख्याली पलाव में जो उनकी बातें आती हैं वो उन्होंने रिपीट की, एंड समहाउ ये बिलीफ आ चुका था उनमें कि वाकई 99% मिलिट्री हमारे साथ है, 99% जुडिशरी हमारे साथ है, हम जो है हम एक कू ले आएंगे, एंड जनरल आसिम मुनीर इज़ नॉट इन पावर एंड इमरान खान इज़ अनटचेबल, कोई क्या ही उनका बिगाड़ लेगा. अब कहा जाता है जी उनको इलीगली अरेस्ट किया गया. एक पूरा टाइम पीरियड था जिसमें लीगली उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई. इमरान खान तो बार बार औरों के बारे में ये बोलते थे कि साउथ कोरिया में एक फेरी डूबी, प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने बोला जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी. ये होते हैं इज़्ज़तदार लोग. यहाँ पर खुले खुले केसेस आ गए. अब वो उनमें मेरिट है नहीं है वो तो जुडिशरी डिसाइड करेगी ना, बट एक केस तो है जिसमें आप ख़ुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ मेरी घड़ी थी तोशाखाना की, मैंने बेची. मलिक रियाज को जो सुप्रीम कोर्ट के जो यूके ने पैसे पाकिस्तान को भेजे, आपने वो मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिए. अगेन ये कोई अनडिनाइबल बात नहीं है, ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं. तो देर इज़ इनफ मवाद देर, आपका एक वारंट बना हुआ है, जुडिशरी ने इशू किया हुआ है, ये सारे लीगल तरीके से चीज़ें की गई हैं. पुलिस आपके घर जाती है, आप उन पर पुलिस बॉम्ब मार देते हैं, पुलिस आपको अरेस्ट करने जाती है, आप कहते हैं सारे पहुँचो, सारे जमान पाक पहुँचो. तो क्या तरीका था उनको अरेस्ट करने का? उनको जब बोला जाता है कि भाई आप कम से कम कोर्ट के सामने पेश तो हो जाएं, वो कहते हैं मैं नहीं आऊँगा. जजेस जो हैं वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, आप एक पूरा टोला लेके जाते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, गाड़ी से वो अंगूठा लगाते हैं, फिर बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट भी गायब हो गया, डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलता. तो पूरे पुलिस की पूरी जुडिशरी का एक मजाक बनाया हुआ था ना. ये टाइम पीरियड हम भूल जाते हैं जब हम कहते हैं इनको कोर्ट से अरेस्ट किया, ये गलत था. जी बिल्कुल अरेस्ट था, लेकिन क्या तरीका क्या था उनको अरेस्ट करने का, क्या तरीका था उनको अरेस्ट करने का? ये नॉनसेंस के हम सब भूल गए हैं कि एक पूरा महीने दो महीने थे बीच में जब जमान पार्क के अराउंड कैंप्स लगे हुए होते थे, केपी से पुलिस मंगवा ली गई थी, कि केपी पुलिस पंजाब पुलिस का टाकरा हो रहा था, पुलिस को डंडे मारकर पुलिस पे पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जा रहे थे, ये सारा टाइम पीरियड हम भूल गए. तो अगर तो हम कहते हैं भाई एक अरेस्ट वारंट था, कोर्ट ने इशू किया था, लीगली किया था केसेस. आप अगेन आई ऑल्सो थिंक हुमायूं दिलावर का जो जजमेंट है इट्स BS, जिस तरह से वो केस हैंडल किया गया इट्स अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस. आपको पब्लिक करना चाहिए था ताकि आवाम को भी नज़र आए कि क्या हो रहा है, क्या मेरिट्स हैं, क्या सही है, क्या गलत है. पर कुछ ना कुछ तो फैक्ट्स हैं ना कि दैट वारंट्स एन अरेस्ट वारंट. तो आप जाएँ, आप लड़ें उसको कोर्ट्स में, आप उसको लड़ें पब्लिक डिस्कोर्स में. जो तरीका है लड़ने का आप वो लड़े, राइट? आप ये तो नहीं कर सकते ना कि मैं पैब्लो एस्कबार हूँ और करके दिखा लो मुझे अरेस्ट, तुम्हारी जुडिशरी तुम्हारी पुलिस फुट लो जो फुटना है, आई एम अनटचेबल. वी कांट, राइट? लाइक नो नेशन ऑफ लॉज कैन हैव समथिंग लाइक दिस. तो उनका जो अरेस्ट है उसका जो तरीका है उसके जो ऑप्टिक्स हैं देवर टेरेबल. बट आप मुझे बता दें कि किस तरह अरेस्ट करते हैं, वॉज देर एनी अदर वे? अगर तो आपके पास इसका कोई जवाब है तो वो शायद आप मेरे से ज़्यादा क्रिएटिव हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं नज़र आता. सो इन टर्म्स ऑफ द आइडिया दैट इमरान खान शुड हैव बीन अरेस्टेड, एम आई अगेंस्ट दैट? नो, बिकॉज देयर वर इनफ केसेस विद इनफ मेरिट. यस, द प्रिंसिपल ऑफ द मैटर आई एम अगेंस्ट, कि भाई जब آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو سارے کیسز غائب ہو جاتے ہیں. 2014 میں پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, وہ کیس غائب ہو جاتے ہیں. اے ٹی سی میں ایک کیس ہے ٹیررزم کا, ڈسپائٹ اے ٹیررزم کیس ان دا اینٹی ٹیررزم کورٹ اگینسٹ عمران خان, عمران خان پرائم منسٹر بن جاتے ہیں کیونکہ ون پیج چل رہا ہے. فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ 8-9 سال کولڈ اسٹوریج میں پڑا رہتا ہے, کوئی اس میں نہیں اپڈیٹ ہوتی کیونکہ جی عمران خان کو آپ کو استعمال کرنا ہے. نواز شریف کو ہٹانا ہے, جی پینما کیس, نواز شریف کو استعمال کرنا ہے. نواز شریف جی لینڈ ہوں گے اسلام آباد میں, پہلے ان کو بیل ملے گی پھر وہ لاہور جا کر جلسہ کریں گے. یہ نان سینس اور موکری جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے ہماری جوڈیشری کی, ہماری لاس کی, ہماری کانسٹیٹیوشن کی, وہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ بھائی جب آپ نے پولیٹیشین کو استعمال کرنا ہے وہ ہیرو ہے, سارے کیسز غائب. جب آپ نے اس کو اریسٹ کرنا ہے سارے کیسز سامنے لے آئیں. سو دا ٹائمنگ آف ایوری تھنگ واز بیکاز دے وانٹیڈ ٹو ریموو عمران خان فرام پالیٹکس ایٹ دیٹ پوائنٹ. 100% اگری. دیٹ بینگ سیڈ, اگر تو کیسز ہیں, اگر تو کرپشن ہے, اگر تو مسئلے مسائل ہیں, کیا کریں ہم؟ واٹ شوڈ اینی تھنگ بی ڈن ان اے پرفیکٹ ورلڈ ویئر اے جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ اینڈ فیئر اینڈ انبائسڈ؟ مے بی دیز تھنگز وڈ ہیپن وداؤٹ دی انٹروینشن آف دی اسٹیبلشمنٹ, بٹ ہم اس پرفیکٹ ورلڈ میں تو نہیں رہتے. تو یہ دونوں سائڈ پہ مسئلے مسائل ہیں. یہ اریسٹ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے 9th میں. اگین آپ کتنا بیانیاں اور جھوٹ سے گیس لائٹ کر سکتے ہیں عوام کو. فالس فلیگ آپریشن تھا 9th میں, پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے. کوئی سینس ہے اس بات کا؟ کوئی دنیا کا سینس ہے اس بات کا؟ چلیں جی میں آپ کو کہتا ہوں کہ 9th میں والے دن میں ایک جرنلسٹ کے گروپ میں ہوں, جو پی ٹی آئی کے گروپس میں باتیں ہو رہی تھیں, لوگوں کے ایڈریس لیک کیے جا رہے تھے, لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ ادھر پہنچو. وہ آپ نے نہیں دیکھا وہ انفارمیشن آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے, لیٹس لک ایٹ دی انفارمیشن available to us. ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ گیٹ ان ٹو دا اسپیکولیشن دیٹ پی ٹی آئی لیڈرز ہو آر انوالوڈ ہو آر سٹنگ دیئر ہیو گون آن ریکرڈ ٹو سے کہ پلان تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پہنچنا ہے, یہ جانا ہے. یہ سب اسپیکولیشن ہے, سب کا ہمارے پاس کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ان ساری چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہسٹری بھی بھول جاتے ہیں کہ جب عمران خان کو گولی لگی تھی فواد چودھری نے جا کر بولا تھا کہ بدلہ لو, تم لوگوں نے بدلہ لینا ہے اس چیز کا. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو انفلامیٹوری بیانیاں آ رہے تھے پہلے آ رہے تھے کہ ہم راولپنڈی جائیں گے, ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. ہم 9th مئی کو دیکھتے ہیں فار آن اٹس اون. پہلے تو فالس فلیگ آپریشن اگر پی ٹی آئی کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اریسٹ ہوئے ہیں اور پورے پاکستان میں کوئی باہر نہیں آیا, کیونکہ 9th مئی کو جو ہمیں نظر آیا وہ تو فالس فلیگ ہے. ٹھیک ہے, 9th مئی کو ہوتا کیا ہے, سمجھیں پہلے ہوتا کیا ہے. 9th مئی کو پی ٹی آئی کے لیڈرز اگین, جو ان کو ملٹری کورٹس 100% اگینسٹ, ٹوٹل کیپیچولیشن آف دا گورنمنٹ کہ انہوں نے ملٹری کورٹس میں یہ ٹرائل ہو رہے ہیں, خاموشی سے ہو رہے ہیں, ایکسیس ٹو جسٹس ان لوگوں کو نہیں مل رہا, زیادتی ہے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کو, جن لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے, ان کی فیملیز کو ہراس کیا گیا ہے, 100%, کروڑ فیصد, 1000% یہ چیزیں غلط ہیں. پیپل ہو ور انوالوڈ ور لیڈنگ دیم, رائٹ؟ اگر یاسمین راشد, شاہانہ گلزار, جو میں سوری ان کا نام اگر غلط بول رہا ہوں, ویسے میں ان کے بڑی ان کے بیانی ہے اور ان کی باتیں جو ہیں وہ سیویئرلی میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کئی ایسی باتیں کی ہیں جو مجھے نازیبہ لگتی ہیں, لیکن وہ جیل میں جس طرح کھڑی ہیں, میں تو نہیں ایک دن بھی جیل جاؤں گا. ٹھیک ہے, میں جیل گیا, میں اگلے دن جو وہ بولیں گے بولنے کو میں بول دوں گا, مذمت کر دوں گا. سو دا فیکٹ دیٹ سم وومن از شوئنگ دا کائنڈ آف بریوری دیٹ آئی وڈنٹ, ہاؤ کین آئی ناٹ رسپیکٹ دیٹ؟ ہاؤ کین آئی ناٹ رسپیکٹ پیپل لائک یاسمین راشد اور شاہانہ گلزار اینڈ ایوری بڈی انوالوڈ ہو از سفرنگ فار واٹ دے بلیو ان, ہو از سفرنگ فار دا لیڈر دیٹ دے بلیو ان, دا پارٹی دیٹ دے بلیو ان؟ آئی مے ہیو اے ملین ڈس اگریمنٹس وتھ دیٹ, آئی ہیو نتھنگ بٹ اٹموسٹ رسپیکٹ فار پیپل ہو پٹ دیئر منی ویئر دیئر ماؤتھ از. تو جو جو لوگ جیل میں سفر کر رہے ہیں اور اپنی پرنسپلز اپنے ذہن میں جو ان کے پرنسپلز پہ کھڑے ہوئے ہیں, سلوٹ ہیں ان لوگوں کو. تو یہ لوگ ایک لوگوں کو لے کر جاتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے یا کور کمانڈر ہاؤس ادھر لے کر جاتے ہیں. چلے اب یہاں پر بھی ہم ایک باؤنڈری کراس لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ لے کر گئے تھے, انہوں نے یہ نہیں بولا تھا کہ آپ اندر جائیں یا جلائیں یا گرائیں یا ماریں. چلیں جی ہمارے پاس ایگزیکٹ ایویڈنس نہیں, ہمارے پاس اتنا ایویڈنس ہے دیٹ دیئر لیڈنگ, دیٹ دیئر سینگ لیٹس گو دیئر, دیٹ دیئر ڈسکسنگ ان اے منظم وے کہ یہاں پہ جانا ہے. یہ نہیں ہے ایویڈنس کے اندر جا کے جلاؤ, सिर्फ प्रोटेस्ट करनी थी, बाहर करनी थी, पीसफुल करनी थी, वायलेंट नहीं होना था. आप इसमें ये बोल सकते हैं कि ये हो नहीं सकता कि आप एक मॉब को ले जाएं वहाँ पर और फिर वो पीसफुल रहे. अच्छा जी, इसमें फिर अगेन एविडेंस छोड़कर बयानिए ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि उनको आने दिया, क्योंकि वो बलोच नहीं है, क्योंकि वो पशून पीटीएम नहीं है. यही नाइन्थ में क्वेटा में भी हुआ था, वहाँ पर आपको लाशें नज़र आईं. वो पीटीआई ने नहीं हाईलाइट किया क्योंकि उनको पता है कि हम अपने कॉज को अगर बलोच कॉज के साथ जोड़ेंगे तो हम कहाँ होंगे, आप ख़ुद सोच लें उस बारे में. विच इज़ वाई से पीटीआई जेन्युइनली एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है. वो उसी तरह सिलेक्टेड होना चाहती है जिस तरह पीडीएम होना चाहती थी. वो उन्होंने वो क्वेटा वाला नहीं हाईलाइट किया, आपको कहीं नहीं मिलेगा वो. साथ ही साथ जो स्वात में आपने देखा था मोटरवे एक्सचेंज जो भी था जलते हुए, उसके बाद उन लोगों ने अपना मुंह जो है या रुख जो है वो एफसी की तरफ भी किया था. फिर जब ऊपर से गोलियां चली हैं वो चीज़ नहीं हाईलाइट की पीटीआई ने. पीटीआई का भी फोकस क्या है, लाहौर. अब आप समझें, अगर तो जनरल बेग की ग्रैंड डॉटर खतीजा शाह, यास्मीन राशिद, डिफेंस के लोग, पढ़े लिखे लोग, गुलबर्ग के लोग, इलीट लोग एक ग्रुप बनाकर जाते हैं ना कोर कमांडर हाउस की तरफ, आप नहीं उन पे गोलियां चला सकते. अब आप रिवर्स सोचें, अब आप सेंस सोचें ना. अगर आप कंस्पिरेसी थ्योरी से बाहर आ जाएं कि भाई अगर फॉल्स फ्लैग नहीं था तो उन्होंने ये करने क्यों दिया, आप कह क्या रहे हैं, आप गोलियां चला दें. नाउ इमेजिन दिस सीन कि ये लोग मिलिट्री फैमिलीज, इलीट फैमिलीज, द रिचेस्ट ऑफ द रिच क्राउड, 100-200 लोग जा रहे हैं कोर कमांडर हाउस की तरफ और इन पर उस तरह गोलियां चलाई जाती हैं जिस तरह केपी में चलाई गई या क्वेटा में चलाई गई. और लाहौर में मेन मॉल रोड पर 25 लाशें और 100 लोग वाउंडेड हैं. क्या होगा पाकिस्तान में? और ये कुछ 100 लोग वो नहीं हैं कि बलोच मिसिंग हो गए जिनकी मेनलैंड पाकिस्तान को परवाह नहीं होती, जिस तरह पीटीआई के भी एक लॉयर ने कहा था कि ये क्वेटा या पेशावर नहीं है, लाहौर है, यहाँ आप ये नहीं कर सकते. अब आप ये इमेजिन करें, अब बताएं ये हो सकता था? एज पावरफुल एज वी थिंक द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज, कुड दे हैव डन दिस? एट द सेम टाइम व्हेन वी से के जी प्री प्लान्ड था, आपने वो वीडियोस नहीं देखी कि कोर कमांडर हाउस के अंदर जो कोर कमांडर हैं वो अपनी फैमिली के साथ हैं, उनके जो बच्चे हैं वो छुप रहे हैं और मॉब आया हुआ है, ये प्लान था? वो क्या उन्होंने एक मूवी शूट की है? एक्टर्स हैं वो, क्राइसिस एक्टर्स हैं. आपने एक मॉब दिया हुआ है जिसके पास कैरोसिन है. लेट्स अज्यूम ना कंप्लीट फॉल्स फ्लैग है, मिलिट्री ने खुद किया, विच ऑल्सो इज रिडिक्यूलस बिकॉज एक मिलिट्री जो है वो अपनी माइट एक फियर फैक्टर पे चलती है. उस पर आते हैं, क्या वो मिलिट्री ये कंट्रोल कर सकती थी कि हम एक मॉब भेजेंगे कोर कमांडर हाउस के घर के अंदर, उसके बच्चे होंगे, इनके हाथ में केरोसिन भी होगा, इनके हाथ में डंडे भी होंगे, क्या आउटकम होगा इसका, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं? अब आते हैं मिलिट्री माइट के आर्ग्यूमेंट के ऊपर, राइट? हाउ कैन द मिलिट्री कंट्रोल एवरीथिंग थ्रू फियर? हमारे जान की किताब पढ़ें, रूल बाय फियर. आपको डर है, आपको खौफ है, इसीलिए आप मिलिट्री को नहीं चैलेंज कर सकते. नाउ ऑल ऑफ अ सडन आप टीवी चलाएं, कोर कमांडर हाउस हैज फॉलन, जी लेट्स से एफसी हेडक्वार्टर्स हैव फॉलन, ये न्यूज़ चल रही है, वो तो ख़त्म हो गया ना फियर. तो जो लोग घर में भी थे वो भी बाहर आ जाएंगे, जो लोग खामोश थे वो भी बाहर आ जाएंगे कि ये तो बड़ा आसान है, यहाँ पे तो अब एक रेवोल्यूशन आएगा. तो क्या आपको लगता है हमारी मिलिट्री इतनी बेवकूफ़ है कि वो चाहती थी पूरे मुल्क में इस तरह के विजुअल्स जाएं कि भाई हमारी जो इंस्टॉलेशंस हैं, हम जो ये एक सिक्योरिटी का फसाद आपको खड़ा करते हैं, ये कंप्लीट फसाद है, ये विजुअल्स चाहते थे वो लोग पूरे मुल्क में जाएं? किस तरह से हम ये बातें करते हैं? अच्छा, फॉल्स फ्लैग, अच्छा जी चलें सब मान लिया फॉल्स फ्लैग है, ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ आप डिसएग्री करते हैं, आपकी कोई और थ्योरी है, इमरान खान का जो भांजा है हसन नियाज़ी ऐसा क्या एजेंट है? हम कहते हैं ना जी वायलेंस वो नहीं कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वायलेंस हो गया, चीज़ें जला दी गई, उसके बाद वहाँ जब भंगड़े डाले जा रहे हैं, कोर कमांडर की पैंट लेकर जलसा हो रहा है, वो हसन नियाज़ी खड़ा हुआ है ना वहाँ पर, तो हम ये कहें कि इमरान खान का जो भांजा है वो ऐसा एजेंट है, वो उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा था? अगले दिन कोर्ट में बताया जाता है इमरान खान को ये हुआ है कि आप कंडेम करते हैं, वो कहते हैं मुझे फिर अरेस्ट किया तो फिर यही होगा। आर वी टू नाउ अज्यूम दैट दिस मैन वॉज नॉट अवेयर दैट दिस वॉज द प्लान ऑल अलॉन्ग? अगेन चले मैं स्पेकुलेशन में जा रहा हूँ इस पर, मेरी राय है ये, ऑब्वियसली जो लोग इन्वॉल्व थे उनका जो उन्होंने जो बातें की हैं कि क्या मीटिंग में डिसाइड हुआ था, दैट सॉर्ट ऑफ बोल्स्टर्स दिस ओपिनियन, लेकिन मेरी राय ये ज़रूर है कि यही प्लान था कि भाई हमने प्रेशर रखना है, अगर तो ये करेंगे इमरान खान क्योंकि रेड लाइन है, क्योंकि अनटचेबल है, और यही इस तरह की बातें हो रही थी ना कि इमरान खान रेड लाइन है, अगर इमरान खान को अरेस्ट किया तो उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। हसन नियाज़ी ने बोला था अगर इमरान खान अरेस्ट हुआ तो उसके बाद हम ये नहीं देखेंगे कौन हाफिज़ है कौन मौलवी, इस तरह की भी बात की थी। वर्ड्स मेरे ऊपर नीचे हो रहे होंगे, मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया, मैं घंटे से ऊपर बोल रहा हूँ विदाउट कट्स विदाउट इंटरप्शन विदाउट नोट्स टुडे। तो एक इवेंट इस तरह का होता है, अगेन उसके बाद जो क्रैकडाउन किया गया, जियो फेंसिंग करके सबको ही अंदर कर दिया गया, ज़्यादती है, गलत है, एक पॉलिटिकल पार्टी को रैप अप कर दिया गया, गलत है, उनको सिंबल नहीं दिया गया, गलत है, बर्बरियत है। अगर उस्मान दार कहते हैं कि मेरी फैमिली को हरास किया गया, मेरी कमर पे निशान है, किस मुंह से मैं कंडेम करूं, कितना मैं बुरा बोलूं इस चीज़ को, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ये हरकतें करती हैं कि लोगों की माएँ बहनों को हरास करती हैं, इससे गिरी भी कोई हरकत नहीं है, जो कैमराज लगाते हैं इससे गिरी भी कोई हरकत नहीं है, दिस इज़ द मोस्ट कंडेमेबल थिंग। बट दैट डज नॉट मीन के नाइन्थ में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाता है। नाइन्थ में एक फूलिश आइडिया था पीटीआई का, जिनका ये इरादा था कि जिस तरह टर्की में कू अटैम्प्ट होने की कोशिश की गई थी तो टैंकों के सामने टर्किश लोग लेट गए थे, तो इसी तरह इमरान खान ने जिस तरह एक स्पीच में भी बोला था कि मिलिट्री ऑफिसर्स जब घर जाते हैं तो उनके घर वाले पीटीआई के साथ होते हैं, फिर किसी और पीटीआई लीडर ने ये भी बोला था कि जब मिलिट्री आपको ऑर्डर दे तो आपने नहीं करना, आपने गने लोगों पे उल्टा देनी है, कुछ इस तरह की बात की थी, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ। तो देर वॉज ड्यू टू फ्रॉड्स लाइक आदिल राजा प्रमोटिंग दीज आइडियाज़, दिस नोशन विद इन पी टी आई का थिंक टैंक के अगर हम ये स्पार्क इग्नाइट करेंगे पूरे पाकिस्तान में एक आग लग जाएगी, और रैंक एंड फाइल के जो मिलिट्री के लोग हैं दे विल टर्न ऑन जनरल आसिम मुनीर, देर विल बी अ कू। आप लोगों ने वो वॉइस नोट्स भी पढ़े सुने होंगे कि ये खबर भी आम कर दी थी थ्रू पी टी आई व्हाट्सएप ग्रुप्स के कू हो गया है, जनरल आसिम मुनीर मुल्क में ही नहीं है, उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा, वो जब वापस आएंगे उनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, इस तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग्स वॉइस नोट्स भी रिलीज़ किए गए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन लोग शेयर कर रहे थे। तो ये झूठ और प्रोपेगेंडा की बेसिस पर पी टी आई ने जो गलती की उन्होंने इस पर यकीन कर लिया कि वाकई यही होगा, हम कू कर लेंगे एंड एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। पी टी आई का जो प्लान था कि जनरल आसिम मुनीर विल बी रिमूव्ड एंड एवरीथिंग एल्स विल स्टे एज इट इज़, वी विल कम इन टू पावर देन, कोई मुल्क में रिफॉर्म नहीं होगा या कोई इंस्टीट्यूशनल बैलेंस की जिक्र नहीं होगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी एंड अल्लाह खैर सल्लाह वील रूल फॉर एवर, लाइक जो हमारा जनरल फैज़ वाला प्लान था, अब वो किसी और के साथ या वापस जनरल फैज़ को ला सकते हैं। बहुत ही फूलिश, बहुत ही शॉर्ट साइटेड, बहुत ही इगोइस्टिकल प्लान था, बेस्ड ऑन लाइज एंड प्रोपेगेंडा, बेस्ड ऑन ड्रिंकिंग योर ओन कूल एड। ठीक है, आप अपने बयानिए के लिए कह सकते हैं कि 22 करोड़ हमाम हमारे साथ है, लेकिन आपने मल्टीपल जलसे करने की कोशिश की जिसमें आपने कोशिश की कि 10 लाख लोग आ जाएं, लाख लोग आ जाएं, कोई नहीं आ रहा था ना। इवन जो वीडियो है जिसमें इमरान खान को गोली लगी है, कितने लोग हैं नीचे जो सुन रहे हैं, कितने लोग आए हैं इमरान खान को सुनने, कितने लोग उस मोटरकेड को फॉलो कर रहे हैं, बेयरली एनी वन, लिटरली जो साइड पे लोग खड़े हुए थे सड़क के, वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है. आप जाकर देख लें कि वो पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा फिजल आउट कर चुकी थी. विच इज़ ऑल्सो वाई मे बी आई थॉट कि इलेक्शंस में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं होगी जितनी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं. आई वॉज प्रूविंग रॉन्ग इन दैट, राइट. पी टी आई का जो सपोर्ट बेस है उसने एक्सेलेंट मोबिलाइजेशन, एक्सेलेंट मीडिया स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने वोटर बेस को चार्ज करके पोल्स तक लेकर आया. पीटीआई को वोट पड़ा. पीटीआई अगर तो बैड सिंबल नहीं छीना जाता फिर क्या होता, आई डोंट नो. बट सब होने के बावजूद क्लियर मेजॉरिटी के साथ पीटीआई को आना चाहिए था. उन्होंने वोट लिए हैं, रिगिंग की गई, उनसे 20-30 सीटें चोरी की गई. आई एग्री विद ऑल ऑफ दैट. द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू सेट द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड स्ट्रेट. आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये गुड और बैड के बियॉन्ड एक रियलिटी है जिसमें इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, इंडिविजुअल एम्बिशंस आर इन्वॉल्व. वो ना उनमें से कोई एक फरिश्ता है, ना उनमें से कोई एक फिरौन है, ना उनमें से कोई एक मूसा है. ये अपने एम्बिशंस के लिए, अपनी गोल्स के लिए एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड खेल रहे हैं. इमरान खान ने मिसकैलकुलेट किया. He had to pay for that. Now what is happening? Now what will happen? I don't know. पाकिस्तान में predict नहीं करनी चाहिए कोई चीज़ें, लेकिन अब एक ऐसे level पे push हो चुकी हैं चीज़ें where at least General आसिम मुनीर के जो establishment है उन्होंने realize किया है कि इमरान खान एक reliable partner तो नहीं है. बीच में शेर अफजल मरवत ने ये भी बोल दिया था कि अमेरिका नहीं, सऊदी अरेबिया ने इमरान खान को हटाया है. उसके बाद जो हुआ वो इंटरेस्टिंग है कि क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसने क्या रिट्रैक्ट किया. ये चीज़ें फॉलो किया करें, इससे आपको समझ में आएगा कि किन बातों में ज़्यादा सच्चाई है, किन बातों पर ज़्यादा इशूज़ बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस वजह से बनते हैं. तो पीटीआई भी चल रही है, गवर्नमेंट भी चल रही है, मुल्क भी चल रहा है, इकॉनमी भी चल रही है. जो लोग कहते थे कि भाई इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं होगा, वो लोग मिलिट्री के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं. जो हमारी फाइनेंशियल एलीट है वो जाके मिलिट्री को ये भी बोलती है कि आप ही चलाते रहें, कोई मसला नहीं, इलेक्शन भी ना करवाएं, कोई टेंशन नहीं. एंड इट्स बिकम, इमरान खान स्टोरी हैज़ बिकम अ टेल ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी. कि भाई there was so much promise and potential, there was so much that he could have done that could have helped the country, but unhone apne ego ke liye pure mulk ko daav pe laga diya. And uska jo khamiyaza hai, jitna wo bhukat rahe hain utna hi awam bhi bhukat rahi hai, ki imran khan ke personal ambitions, general faiz ke personal ambitions, general bajwa ke personal ambitions, inke sath jo hua wo to hua. करोड़ों आवाम ने जो डिस्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन फेस की, उसका क्या? इन गेम्स की वजह से जिन लोगों ने अपने बच्चों का कत्ल किया उनका क्या, जिन लोगों ने अपना कत्ल किया उनका क्या, जो लोग ये सोए जानते हुए कि उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं उनका क्या? दीज आर पीपल वी डोंट केयर अबाउट. वट वी केयर अबाउट आर दीज लॉफ्टी पैलेस इंट्रीग. तो गुड बैड से बियॉन्ड सोचें. अगर तो हम कहते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो रोल है पॉलिटिक्स में, हम उसके ख़िलाफ़ हैं. तो जब जब जिन लोगों ने उस रोल को स्ट्रेंथन किया है उसको गलत बोले, वो परमानेंट नहीं होती चीज़, राइट. पीडीएम भी यही बातें कर रही थी जो आज इमरान खान कर रहा है. मैंने उस टाइम भी उनको नहीं सपोर्ट किया था. नवाज़ शरीफ जब डिस्क्वालीफाई हुए थे मैंने उस चीज़ को भी गलत बोला था, लेकिन मैंने सड़कों पे आकर चीज़ें नहीं जलाईं, ना मैंने कोई मेजर प्रोटेस्ट किया. मैंने भाई अभी जो नवाज़ शरीफ के साथ हो रहा है वो गलत है. 90s में नवाज़ शरीफ ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया था. इमरान खान ने इतने साल जो गलत किया मैंने उसको बोला ये गलत है. आज इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, मैं कह रहा हूँ वो गलत है. ना मैं तब सड़कों पर आया था, इनफैक्ट मैं इमरान खान के लिए सड़कों पर आया था 2013 में, गलती हो गई थी. ना मैं अब सड़कों पर आया हूँ. सो फॉर मी आई सी इट द सेम वे कि भाई पीडीएम सेलेक्टेड होना चाह रही थी तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, इमरान खान सेलेक्टेड होना चाह रहे थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई। इस्टेब्लिशमेंट में दो फैक्शंस थे, एक फैक्शन विक्टोरियस आ गया, दूसरा फैक्शन हार गया, अब वो दूसरा फैक्शन सफ़र कर रहा है। एक फैक्शन इन पावर है, कल को ये चीज़ फिर बदल सकती है, गॉड नोज। जो लोग दावे करते थे कि हम सच के साथ हैं, हम लोग हक के साथ हैं, उनमें से कई लोग उन्होंने तो पीटीआई छोड़ दी, अब वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अबरारुल हक। इतनी बातें करने के बाद, इतने जलसे करने के बाद पीटीआई छोड़ के कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। पीटीआई ने केपी में गवर्नमेंट ली हुई है, उनको लग नहीं रहा कि कोई फ़िक्र है। जितनी वो बयानिए में बातें कर लें कि जी इमरान खान की रिहाई हमारा नंबर वन इशू है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, गवर्नमेंट चल रही है, खुश खुश जी रहे हैं वो सीमिंगली। शेर अफजल मरवत एक बात करते हैं, रऊफ हसन एक बात करते हैं, किसी को समझ नहीं आती कि पीटीआई है कौन। एंड द फाइनेंशियल एलीट स्टे इज़ द सेम, द एस्टेब्लिशमेंट स्टे इज़ द सेम, द स्टेटस को स्टे इज़ द सेम। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो मुल्क इसी तरह चल रहा था, जब शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर हैं तब भी मुल्क इसी तरह चल रहा है। तो इस सब से क्या मिला हमें, दैट्स द क्वेश्चन आई वॉन्ट टू लीव यू विद। के हैड वी जस्ट लेट डेमोक्रेसी हैपन, हैड वी जस्ट नॉट इंटरवीन्ड, हैड दीज पीपल केप्ट देयर ईगोज इन चेक और पर्सनल एम्बिशन के लिए मुल्क को गिरवी ना रखते और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी ना तबाह करते, तो पाकिस्तान आज क्या होता। दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ 9th May in my opinion, and that's the tragedy we continue to live in beyond the people involved and what they have suffered, which we condemn. It is what they have made this country into. That's the sad part.